डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट ओटी इतिहास साहित्य और धर्मशास्त्र व्याख्यान 18। कॉपीराइट 2020 टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट अपने पुराने नियम के इतिहास साहित्य और धर्मशास्त्र की कक्षा में ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक के कठिन कानूनों और जेरिको के कब्जे तक जोशुआ की पुस्तक के परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरी पूर्वावलोकन 00026 गुरुवार के लिए आप लोग 1 सैमुअल पर काम कर रहे हैं। पिछली कक्षा के बाद किसी ने मुझे याद दिलाया कि वहां गेट लॉस्ट इन जेरूसलम के लिए एक असाइनमेंट है और समस्या यह है कि मैंने आपको गेट लॉस्ट इन जेरूसलम सॉफ्टवेयर के लिए सेट नहीं किया है, तो मुझे इसकी जांच करने दीजिए और हम इसे 1 सप्ताह पीछे धकेल देंगे। मैं आज आपको गेट लॉस्ट इन जेरिको दिखाऊंगा और इसलिए हम जेरिको की एक आभासी यात्रा करेंगे। तुम लोग आज जेरिको जाना चाहते हो? हाँ, हम जेरिको जाएंगे। यह एक तरह से जेरिको की आभासी यात्रा होगी, लेकिन जिस प्रकार की तकनीक आप जेरिको के लिए देखते हैं वही तकनीक आप जेरूसलम साहसिक कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। गुरुवार के लिए आप लोग 1 शमुएल और कुछ भजनों पर काम कर रहे हैं। जेरूसलम में खो जाओ को छोड़कर उस पर सब कुछ करें और मैं अगले सप्ताह के लिए इसे आपके लिए सेट कर दूंगा। आज मैं उन कठिन दिनों में से एक होने जा रहा हूं जहां हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के साथ संघर्ष करने जा रहे हैं और यह कुछ कठिन चीज होने जा रही है। तो हम प्रार्थना के 1 शब्द मांगेंगे। आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए मार्गदर्शन मांगेंगे। पिता, हम इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो शब्द कहे उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने 3000 साल पहले लोगों से बात की थी और आपने इसे हमारे लिए रिकॉर्ड किया था। हम प्रार्थना करते हैं कि आप 21वीं सदी में हमें अपनी स्थिति में वापस आने और यह समझने में सक्षम होने में मदद करें कि आप 3000 साल पहले क्या कर रहे थे। हमारे लिए पिता, विभिन्न बिंदुओं पर उस संस्कृति को समझना कठिन है। उस समय कुछ कानून जो बनाए गए थे, हम वास्तव में उसके बारे में अनभिज्ञ हैं। जितना हो सके हमें समझाओ। हम प्रार्थना करते हैं कि आज की ये चर्चाएं आपके लिए सम्मानजनक हों और हम आपको गौरवान्वित करें और आपके अद्भुत पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें और उनके अनमोल नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। भी सहिष्णुता और विविधता की विडंबना 2:27 से 6:05। हम आज कुछ कठिन अवधारणाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक से कुछ कानूनों पर चर्चा करना चाहता हूं जो हमारी हड्डियों को हिला देते हैं। यह हमेशा एक कठिन समय होता है और वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में कॉलेज के छात्रों को देखना और आप लोगों को देखना दिलचस्प रहा है जो विविधता और सहिष्णुता पर गर्व करते हैं। क्या विविधता और सहिष्णुता 21वीं सदी के आपके 2 प्रमुख नैतिक सिद्धांत हैं? विविधता और सहनशीलता, क्या आप हर तरह की चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं? एक व्यक्ति, मैं कैसे कहूं, बीते दिनों में चीजें वास्तव में अनैतिक मानी जाएंगी। अब एक लड़का एक लड़की के साथ सोता है और क्या होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह टेलीविजन पर होता है, यह फिल्मों में होता है और यह वास्तविक जीवन में होता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी वर्षों पहले यह बहुत बड़ी बात थी। हालांकि हमारी संस्कृति में यदि आप गलत बातें कहते हैं और गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको सूली पर चढ़ा दिया जाता है, आपको बिल्कुल सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो अब हम सहिष्णुता में हैं, लेकिन फिर भी क्या हमारी सहिष्णुता असहिष्णुता की ओर ले जाती है? मैं जो सुझाव दे रहा हूँ वह यह है कि सहिष्णुता और विविधता पर इतना जोर वास्तव में असहिष्णुता को जन्म देता है। इसलिए उदाहरण के लिए वाशिंगटन डीसी में कैथोलिक विश्वविद्यालय में कुछ मुस्लिम छात्र कैथोलिक विश्वविद्यालय में कक्षाएं ले रहे हैं। इन मुस्लिम छात्रों ने कहा कि वे ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने से आहत हैं। एक कैथोलिक विश्वविद्यालय में वास्तव में उनके पास क्रूस पर यीशु के साथ क्रॉस हैं। ये मुस्लिम छात्र इससे आहत हैं और वे चाहते थे कि उन्हें हटा दिया जाए क्योंकि यह उनके लिए अपमानजनक है। अब क्या यह मामला अमेरिकी अदालत में जाएगा और क्या वे यह तय करेंगे कि क्या कैथोलिक स्कूल को क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है? क्या इस तस्वीर में कुछ गड़बड़ है? आखिरी बार आप कब मस्जिद में थे और आपने उनसे कहा था कि आप नाराज हैं और उनसे कहा था कि आप मस्जिद में क्रॉस चाहते हैं? देखिए आपके साथ क्या होता है। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हम ईसाई धर्म के प्रति इतने असहिष्णु हो गए हैं। यह पागलपन है, सब कुछ उल्टा हो गया है। अब समस्या क्या है? अब तुम लोगों को 3000 वर्ष पीछे जाना होगा। प्रश्न, क्या हमारी संस्कृति में हर तरह की चीजें हैं जो पिछले 50 वर्षों में बदल गई हैं? अब आप 3000 साल पीछे जाएं और आप देखेंगे कि 3000 साल पहले के कानून कोड वास्तव में उनके सोचने के तरीके से मेल नहीं खाते हैं। मेरे लिए विडंबना यह है कि 21वीं सदी में अमेरिकी, क्या हम वास्तव में आलोचनात्मक हैं जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं वे ये चीजें कैसे कर सकते हैं, वे इतने क्रूर थे, हम इन लोगों को बर्बर लोगों के रूप में देखते हैं। यह एक प्रकार की विडंबना है कि हम निर्णय करने बैठते हैं फिर भी हमसे इतना सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है। क्या आप वहां विडंबना देखते हैं? मैं आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं जिन्हें समझना मुश्किल है। सच कहूं तो मैं आज तक इन चीजों से जूझता हूं। मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास इन सभी बातों का उत्तर है, लेकिन वे ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे मेज पर रखनी चाहिए और उम्मीद है कि अब से 10 साल बाद जब आप लोग वास्तव में स्मार्ट होंगे तो आप इसका पता लगा लेंगे और मुझे एक ईमेल भेजेंगे और मुझे बताएंगे कि इनमें से कुछ पर क्या उत्तर है यह। लेकिन हम इनमें से कुछ कानूनों के साथ काम करेंगे। ये व्यवस्था विवरण की किताब के नियम हैं जो हमारी हड्डियों को हिला देते हैं। वे हमारी संस्कृति से टकराते हैं, वे हमारी मानसिकता से टकराते हैं और वे चीजों के बारे में हमारे सोचने के तरीके से टकराते हैं। सी सख्त कानून युद्ध 6:06 से 17:33। उनमें से कुछ कानूनों का संबंध युद्ध से है। विशेष रूप से जोशुआ की पुस्तक में हम जोशुआ की पुस्तक में युद्ध की अवधारणा पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इसे यहां पेश करूंगा। हम वास्तव में इसके साथ तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम पूरी तरह से जोशुआ में नहीं आ जाते। यहोशू को बहुत सारी लड़ाइयां झेलनी पड़ी। यहोशू ने जेरिको की लड़ाई में उस तरह की चीज फिट की, युद्ध के नियम। इसलिए यदि आप व्यवस्था विवरण अध्याय 20:4 पर जाएं तो यहां युद्ध के कानूनों के बारे में एक पूरा खंड है। वैसे क्या आज हमारी दुनिया में युद्ध के लिए कानून हैं? क्या कोई जिनेवा कन्वेंशन से परिचित है? क्या काम करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जो उचित हैं? उदाहरण के लिए, क्या हम युद्धबंदियों की रक्षा करते हैं? वैसे भी यहां कुछ कानून हैं जो व्यवस्था विवरण अध्याय 20 से आते हैं। यह श्लोक 4 में कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वह है जो तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तुम्हारे साथ जाता है। 4 पर जाएं। अधिनायक सेना से पूछें, क्या किसी ने नया घर बनाया है और अब तक उसका समर्पण न किया हो? उसे घर जाने दो। दूसरे शब्दों में, यदि आपने एक घर बनाया है और इसे समर्पित नहीं किया है अभी तक इसमें नहीं रहे हैं तो आपको घर जाने की अनुमति है। क्या यह अच्छा कानून है? यदि कोई व्यक्ति युद्ध में जाता है और उसने अभी अभी एक घर बनाया है तो उसका सिर कहाँ होगा? क्या वे अपने उस घर में वापस जा रहे हैं जिसमें वे कभी नहीं रहे? वे एक लड़ाई लड़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या उनका दिमाग वास्तव में इसमें उलझने वाला है या वे वहीं वापस आने वाले हैं? तो भगवान कहते हैं, यदि तुमने अभी अभी एक घर बनाया है और उसमें कभी नहीं रहे या उसे समर्पित नहीं किया है तो घर वापस जाओ, अपने घर में रहो, दूसरों को लड़ने दो। क्या किसी को याद है, गृह युद्ध के बाद उनके बीच वियतनाम नामक युद्ध हुआ था। वियतनाम के दिनों में उन्होंने छात्रों का मसौदा तैयार किया। तो मैं एक कॉलेज का छात्र था और आपको एक नंबर मिला। मैं भूल गया, मुझे लगता है कि मैं 230 के दशक में था, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 230 के दशक में होता तो मुझे ड्राफ्ट नहीं किया जाता। यदि आपको कम नंबर मिले, मान लीजिए कि आपका नंबर 10 था, तो आप इतिहास बन गए। क्या आपको सेना में भर्ती किया गया था, चाहे आपको यह पसंद आया या नहीं, कॉलेज से बाहर, तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, तुम शादी कर लो, यदि आपकी शादी हो गई तो आपको मोहलत मिल गई। मुझे लगता है कि डिक चेनी ने ही ऐसा किया था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग डिक चेनी को डार्थ वाडर के नाम से जानते हैं, वास्तव में वह मेरे नायकों में से एक है। मैं कहता हूँ कि अपने चेहरे पर थोड़ा सा आने के लिए आपको चेनी के व्याख्यान सुनने की जरूरत है, मीडिया संस्कृति उनके बारे में क्या सोचती है, इसके बावजूद वास्तव में वे कुछ शानदार चीजें हैं। इसलिए यदि आपके पास घर है तो आपको मोहलत मिलती है और फिर दूसरा नियम आता है। इसमें कहा गया है कि विवाह की छूट है। यदि आपकी सगाई किसी महिला से हो चुकी है और आप उससे शादी करने की प्रक्रिया में हैं, तो क्या आपको युद्ध में जाना चाहिए? नहीं, वैसे समस्या क्या है? यदि कोई व्यक्ति युद्ध के लिए गया है और उसका सिर घर पर उसकी पत्नी पर है तो क्या वह युद्ध में मारा जाएगा क्योंकि उसका सिर युद्ध में नहीं है? वैसे 1960 और 70 के दशक में अमेरिका में भी क्या किसी शादीशुदा व्यक्ति के लिए मोहलत थी? आपको मोहलत मिल गई। क्या ये कानून हमारे लिए मायने रखते हैं? इसलिए ये काफी अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। सभी युद्ध कानून ऐसा नहीं करते। शांति को एक मौका दें, मैं बस इतना कह रहा हूं कि शांति को एक मौका दें। मैंने किसी को मुस्कुराते हुए देखा, कम से कम वह जानता है 70 के दशक का एक पुराना गाना, गिव पीस अ चांस। यह व्यवस्था विवरण अध्याय 20 पद 10 है। इसमें कहा गया है कि जब आप किसी शहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां के लोगों को शालोम, शांति की पेशकश करें। जब आप किसी शहर पर आक्रमण करने आए तो शहर को शालोम, शांति प्रदान करें। यदि वे स्वीकार करते हैं और अपने द्वार खोल देते हैं तो सभी लोग अधीन हो जाएंगे और श्रम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वे आपके लिए काम करेंगे और मूल रूप से वे लकड़ी काटने वाले और पानी ढोने वाले होंगे। तो आप शहर को बख्श दीजिए। यह फिर से अच्छा है, शांति को एक मौका देने जैसी चीज है। जब आप जोशुआ को पढ़ते हैं तो क्या आपको कभी याद आता है कि वे ऐसा कर रहे थे? आप जानते हैं, वे एक शहर में आते हैं और कहते हैं, अरे शांति बेबी, शांति, बाहर आओ। इसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। सिर्फ इसलिए कि यह रिकॉर्ड नहीं किया गया है, क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया? नहीं, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें की जो रिकॉर्ड नहीं की गई। इसलिए यह संभव है कि उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन वास्तव में इसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो यह मुझे एक और बिंदु पर लाता है जिसे मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कहना चाहता हूँ। क्या ऐसी बहुत सी बातें कही गई हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया था? क्या यह संभव है कि उनके पास ऐसे कानून थे जो उन्होंने वास्तव में नहीं बनाए? प्रश्न, क्या अमेरिका में हमारे पास ऐसे कानून हैं जिनका पालन कोई नहीं करता? अपना सिर हिलाओ, हाँ, हमारे पास ऐसे कई हैं। दरअसल अब लोग कह रहे हैं कि सरकार खुद कहती है कि हमने इन कानूनों को लागू नहीं करने का फैसला किया है। किताबों में कानून मौजूद हैं और सरकार कहती है कि हमने उन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया है। इसलिए शांति को एक मौका दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि शांति को एक मौका दीजिए। वे आसान हैं, यह कठिन है। इसे हेरेम सिद्धांत कहा जाता है और यह अध्याय 20 श्लोक 17 में है। क्रिया रूप हराम है। अब हेरेम, इसका उच्चारण हेरेम है, यह कठिन है। हेरेम का अर्थ है संपूर्ण विनाश, इसका मतलब है वास्तव में मुझे एक कदम पीछे जाने दो, इसका वास्तव में मतलब है भगवान के प्रति समर्पित, लेकिन आपने इसे प्रभु को कैसे समर्पित किया? यह इसे जलाने और शहर में सभी चीजों को मारने के द्वारा था, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और जानवरों को। पूरा शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। वैसे क्या उन्होंने कभी ऐसा किया और पूरे शहर को नष्ट कर दिया, पुरुष, महिलाएं और बच्चे? जिन शहरों में उन्होंने ऐसा किया उनमें से एक का नाम क्या था? जेरिको। क्या उन्होंने जेरिको में किसी को बख्शा? हाँ, राहाब वेश्या को बचा लिया गया, लेकिन शहर के बाकी लोग मारे गए। तो यह हेरेम सिद्धांत हम अमेरिकियों के लिए वास्तव में कठिन है। आप कहते हैं पवित्र गाय, वे वहां जाते हैं और सभी को, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार देते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या यह कठिन है? पुरुषों, महिलाओं और बच्चों और जानवरों को भगवान को समर्पित किया गया और जला दिया गया। तलवार से विभिन्न वस्तुएं मारी गईं। किसी ने पूछा, आप उन सैनिकों का हिसाब कैसे देंगे जो बच्चों को मार रहे थे, शहर में सभी को मार रहे थे? आप इसका हिसाब कैसे देंगे? सच्ची सच्चाई यह है कि मुझे नहीं पता कि इसका उत्तर क्या है। यह मुझे कुछ परेशान करता है। मुझे कुछ बातें पता चलती हैं और जब हम यहोशू की किताब देखेंगे तो हम इसके स्पष्टीकरण में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी यह वास्तव में कठोर है। क्या अमेरिका ने कभी ऐसा कुछ किया? खैर, वास्तव में हमने एक बम गिराया और इसने हर पुरुष, महिला, बच्चों और जानवरों को नष्ट कर दिया। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा सोचें क्योंकि आप 21वीं सदी के अमेरिकी हैं। आप इन सभी चीजों से ऊपर हैं और वे क्रूर बर्बर थे। दरअसल जब परमाणु बम गिरा तो बहुत सारे लोग मारे गए, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और जानवर, हर कोई। वैसे यह बुरा है, हम हर समय बम गिराना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो कौन जानता है कि और कितने लोग मर गए होते। मैं इसके औचित्य में नहीं पढ़ना चाहता। इसका एक हिस्सा युद्ध का औचित्य है और इसका एक हिस्सा यह है कि जब आप अमेरिका में होते हैं और आप एक कॉलेज अकादमिक सेटिंग में बैठे होते हैं तो क्या हम हमेशा शांति और प्रेम और इस तरह की हर बात कहते हैं? क्योंकि क्या हमें वास्तव में वहां जाकर लड़ना है? नहीं, हमारे पास कोई और है जो हमारे लिए यह करता है और हम अपनी अकादमी में अपनी प्रतिभा के साथ वापस बैठना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जबकि वास्तव में उन्हें ही यह करना है। क्या आप शैक्षणिक स्थिति का अहंकार देखते हैं? मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि सावधान रहें जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ समझ लिया है, जबकि आपको कभी बंदूक नहीं खींचनी थी और वास्तव में किसी पर मन का लगाना था। यह आपकी कल्पना से बहुत अलग चीज है। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अकादमिक अहंकार के प्रति सावधान रहें। दूसरा प्रश्न जो मेरे सामने आता है वह यह है कि क्या ईश्वर इस कनानी संस्कृति का न्याय कर रहा है? हाँ, वह इसे जज कर रहा था। वह कहते हैं, मैंने 400 साल तक इंतजार किया, एमोरियों का अधर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने 400 साल तक इंतजार किया। फिर वह इस संस्कृति पर निर्णय के रूप में ऐसा करने के लिए इज़राइल को भेजता है। क्या ईश्वर संस्कृतियों का न्याय करता है? हाँ, सदोम और अमोरा। अब वह ऐसा करने के लिए इसराइलियों का उपयोग कर रहा है। लेकिन आप कहते हैं कि इन सभी लोगों का क्या होता है? जब शिशु मारे जाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरे शब्दों में, क्या मैं एक सीमित इंसान हूँ? क्या मैं समझता हूँ कि ईश्वर कैसे काम करता है? क्या मैं ईश्वर के निर्णय में बैठ सकता हूँ? मुझसे अभी अभी पूछा गया था कि आप ईश्वर के ऐसा करने को कैसे उचित ठहराते हैं? मैं भगवान को उचित नहीं ठहराता। क्या ईश्वर मुझे उचित ठहराता है? मैं ईश्वर को सही नहीं ठहरा सकता क्योंकि मैं यह सब नहीं समझता। जीवन में क्या होता है मैं जानता हूँ, लेकिन जीवन के बाद क्या होता है? क्या यह संभव है कि मारे गए ये बच्चे स्वर्ग जाएं और चीजें उनके लिए बेहतर हों? मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कि इन सभी स्थितियों का बाद में क्या होता है। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि मैं उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मुझे भगवान पर भरोसा है। एक निश्चित बिंदु है जहां आपको पीछे हटना होगा। मैंने इन कानूनों को आंशिक रूप से यहां रखा है क्योंकि मैं आपका सिर फोड़ना चाहता हूं। आपको ऐसी चीजें देने के लिए जहां आप भगवान को अपने अच्छे छोटे से स्थान में नहीं रख सकते हैं। भगवान आपसे प्यार करता है और आपके जीवन बॉक्स के लिए उसके पास एक अद्भुत योजना है। इस तरह के कानून उस पर आपका सिर फोड़ देते हैं और कहते हैं कि एक मिनट रुको, भगवान मेरी समझ से परे हैं। मैं भगवान को नहीं समझ सकता। मेरी बात यह है कि मैं अपनी पत्नी को भी नहीं समझ सकता। मैं भगवान को कैसे समझ पाऊंगा? मैं कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं समझ पाता जो वास्तव में मेरे करीब है। मैं यह सब कैसे समझ सकता हूं कि भगवान क्यों और कैसे चीजों का प्रबंधन करता है? क्या ईश्वर मृत्यु के दूसरे पहलू पर भी न्याय कर सकता है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है? इसलिए जब मेरे पास पूरी तस्वीर नहीं है तो मैं भगवान पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। मेरे पास उस पर वास्तविक निर्णय लेने के लिए कहीं नहीं है। ये हेरेम कानून वास्तव में कठिन है। पूरी चीज प्रभु को समर्पित है और प्रभु के लिए जलाई गई है। इज़राइल ने ऐसा बहुत कुछ नहीं किया। उन्होंने जेरिको और ए और हासोर पर ऐसा किया। उन्होंने इसे तीन शहरों पर किया, इसलिए यह एक बड़ी बात है। इस पर काबू पाना आम तौर पर अमेरिकियों के लिए कठिन है, खासकर 21वीं सदी के लोगों के लिए। जब हम वास्तव में इसे जोशुआ में देखेंगे तो हम यहां वापस आएंगे। जोशुआ ने वास्तव में उसे क्रियान्वित किया। अब यह कठिन है। दी बलात्कार कानून 17:34 से 20:07, अन्य कानून जो हमारी हड्डियों को कंपकंपाते हैं, बलात्कार कानून। वास्तव में बाइबल के अध्याय 22:23 में बलात्कार पर कुछ कानून हैं। आइए मैं इन श्लोकों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। बाइबल शहर में बलात्कार और मैदान में बलात्कार के बीच अंतर बताती है। जब भी आपके सामने ऐसी बलात्कार की स्थितियां आती हैं, तो क्या आपको ऐसा कुछ मिलता है जो उसने कहा हो? उन्होंने कहा, नहीं, यह सहमति से हुआ था। उसने सहमति दे दी, लेकिन उसने कहा, मैंने सहमति नहीं दी, तो आप समझ गए कि उसका बयान सहमति से था। उसका कहना है कि यह सहमति से नहीं था। आपको ये बड़ी बहसें मिली। आप हाल ही में IMF के इस व्यक्ति को जानते हैं। मुझे लगता है कि वह फ्रांस में एक पद के लिए दौड़ रहा था। क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? वह फ्रांस में एक पद के लिए दौड़ रहे थे। न्यूयॉर्क शहर की यह महिला एक सफाईकर्मी थी और उसने स्पष्ट रूप से दावा किया था कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए उसे न्यूयॉर्क शहर में जेल में डाल दिया गया था और वैसे चुनाव फ्रांस में हुआ था। फिर चुनाव होते ही महिला ने क्या किया? सारे आरोप हटा दिए। क्या कोई कहता है, हम्मा क्या यह थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्या लोग किसी को उस पर खड़ा करेंगे? ये मुद्दे जटिल हैं। मैं इस आदमी के पक्ष में खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब सभी आरोप हटा दिए जाएंगे तो क्या इसमें गड़बड़ की बू आ रही है? वह चुनाव में नहीं जा सकते और आप इसी बात पर आश्चर्य करते हैं। यह जटिल है। तो कहते हैं शहर में अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा हो तो चिल्लाना उसकी जिम्मेदारी है। जब वह चिल्लाती है तो क्या होता है? लोग आते हैं और उसकी मदद करते हैं। अगर वह शहर में है और उसके साथ बलात्कार हो रहा है तो चिल्लाने के लिए वह जिम्मेदार है। देश के बाहर मैदान में क्या समस्या है? वह चिल्लाती है और वहां कोई नहीं है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैदान में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वह जितना चाहे चिल्ला सकती है और कोई उसकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि वह बाहर मैदान में है। तो इसने वह भेद बना दिया। अब क्या ऐसी बहुत सी अन्य चीजें हैं जो हम अच्छी तरह से कहते हैं, अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो मैं इसे इस तरह से करता। यदि वह मैदान में है तो उसे बिना सहमति जताने के लिए चिल्लाना पड़ता है और मूल रूप से उसका उल्लंघन किया जाता है। बेशक बाद में आप केवल डीएनए जांच करा सकते हैं और देख सकते हैं कि सौदा क्या है। उस समय कोई डीएनए परीक्षण नहीं होता था। मेरा मतलब इस तरह की किसी भी फोरेंसिक चीज से नहीं है। मृत्युदंड 20:08 से 23:33। उनके पास ये मृत्युदंड कानून है। यदि आपने कभी अपने हाई स्कूल शिक्षकों के लिए पेपर लिखा है तो यह एक और पेपर है। क्या आप मृत्युदंड से सहमत हैं या नहीं? बेशक मैसाचुसेट्स में ये चीजें लंबे समय से चली आ रही हैं, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसी जगहों पर आज भी मौत की सजा दी जाती है। सभी प्रकार की स्थितियों के आधार पर लोग इस पर घबरा जाते हैं। बाइबल के समय में उन्होंने इसे कैसे संभाला? झूठे भविष्यवक्ता व्यवस्था विवरण 13:10 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति झूठा भविष्यवक्ता है तो उसे मार डाला जाना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में एक प्रश्न पूछें। आप लोगों ने अब काफी बाइबल पढ़ ली है। आपने अभी तक भविष्यवक्ताओं को नहीं पढ़ा है। इसराइल में जब उनके पास झूठे भविष्यवक्ता होते थे तो क्या वे आम तौर पर उन्हें मार डालते थे या क्या वे आम तौर पर उनकी सराहना करते थे? हाँ, वे आम तौर पर उनकी सराहना करते थे। इसलिए जबकि व्यवस्था विवरण कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं को मौत की सजा दी जानी थी, आमतौर पर झूठे भविष्यवक्ताओं को बधाई दी जाती थी। हर कोई झूठे भविष्यवक्ताओं से प्यार करता था क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने कहा था शांति, प्रेम और सद्भाव। सच्चे पैगंबरों ने कहा पश्चाताप करो, ईश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। पुराने नियम में लोगों को यह पसंद नहीं आया। सच्चे भविष्यवक्ताओं का क्या हुआ? क्या सच्चे पैगंबरों को कत्ल कर दिया गया? तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि क्या व्यवस्था विवरण के नियमों में जो कहा गया है और इसराइल ने वास्तव में जो अभ्यास किया है उसके बीच कोई विसंगति है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अमेरिका में क्या कानूनों और जो व्यवहार में लाया जाता है उसके बीच कोई अंतर है? इसलिए झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए इसराइल ने ऐसा नहीं किया। कानून के मुताबिक उन्हें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था या इन मृत्युदंड कानूनों को देखने का कोई और तरीका है? और इसलिए मैं वह प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम एक सेकंड में उस पर वापस आने वाले हैं। मुझे वहां कुछ और डालने दीजिए। मूर्ति पूजकों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसमें समस्या क्या है? यदि वह व्यक्ति मूर्ति पूजक है तो उसे मार डाला जाना चाहिए। क्या कुछ राजा मूर्ति पूजक थे? हाँ, लड़के का नाम मनश्शे और सोलोमन है। मनश्शे, या यदि आपको मनश्शे पसंद नहीं है तो आप अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल को पसंद कर सकते हैं। तो तुम्हें मिल गया कि मूर्ति पूजकों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। क्या इसराइल ने फिर मूर्ति पूजकों को मार डाला? उनके कुछ राजा मूर्ति पूजक थे, इसलिए इसराइल में इन कानूनों का बहुत अच्छी तरह से पालन नहीं किया गया। यहाँ कुछ ऐसे हैं जो कठिन होते जा रहे हैं। इसे जांचें, एक विद्रोही बेटे को मौत की सजा दी जानी है। आप कहते हैं, हिल्डेब्रांड, आप एक मृत व्यक्ति होंगे। विद्रोही पुत्र को मौत की सजा दी जानी थी। आप कहते हैं, पवित्र गाय, अपने माता पिता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मौत की सजा दी जाए। वैसे क्या हमारी संस्कृति माता पिता के प्रति विद्रोह पर नहीं बनी है? क्योंकि माता पिता मूर्ख हैं, वे पिछली पीढ़ी से हैं और वे कुछ नहीं जानते क्योंकि वे इसके साथ नहीं हैं। मेरा मतलब है कि आपके माता पिता में से कई के पास बदबूदार आईफोन भी नहीं है। वे जीवन के बारे में कुछ भी कैसे जान सकते हैं जो फेसबुक पर नहीं है? मैं वहां जो कह रहा हूं वह भयानक है क्योंकि फेसबुक कुछ ज्यादा ही निजी हो गया है। वैसे भी मैंने वहां हद पार कर दी, असल में मैंने यह जानबूझकर किया था। मेरे बच्चों ने मुझसे फेसबुक से दूर रहने को कहा और मैंने उनकी सलाह मान ली है। इफ मूल्यों के विवरण के रूप में कानून पर 23, 34, 27, 37। मैं इन चीजों के लिए इस मौत की सजा पर वापस आना चाहता हूँ। मैंने अब अपने दामाद से पूछा, वास्तव में वह शिकागो विश्वविद्यालय का वकील है। उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह वाशिंगटन डीसी में हेरिटेज सेंटर के लिए काम करता है। यह वहाँ एक थिंक टैंक है और वह सुप्रीम कोर्ट के साथ काम करता है। वह वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों को जानता है। वह वास्तव में कांग्रेस से पहले रहे हैं। तो यह आदमी कानून जानता है, उसने कानून सिखाया है। क्लीवलैंड में वह कौन सा स्कूल है? वह केस वेस्टर्न है या ऐसा ही कुछ? वैसे भी उन्होंने केस वेस्टर्न में पढ़ाया है और उन्होंने अन्य स्कूलों में कानून पढ़ाया है, इसलिए मैंने उनसे इन मृत्युदंड कानूनों के बारे में पूछा और मैंने कहा, ऐसा लगता है मैं विद्रोही बेटे के बारे में इन मृत्युदंड कानूनों को समझ नहीं पा रहा हूँ। जो गैर कुंवारी विवाह करती है, आप कहते हैं, पवित्र गाय, हमारी आधी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। विवाह करने वाले गैर कुंवारी व्यक्ति को मौत की सजा दी जानी थी। रॉबर्ट ने मुझे क्या बताया और मुझे लगता है कि यह वास्तव में उनकी ओर से एक अच्छा ज्ञान है। उन्होंने जो कहा वह यह है कि कई बार कानून कोड वास्तव में लागू होने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन कानून कोड स्वयं एक सेट स्थापित कर रहे होते हैं। मूल्य, दूसरे शब्दों में वे यह कहते हुए मूल्यों को मंजूरी दे रहे हैं, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक विद्रोही पुत्र, वह कौन सा मूल्य स्वीकृत कर रहा है? यह वास्तव में 10 आज्ञाओं पर वापस जाता है जो क्या कहती है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो। वैसे क्या यह समाज की बुनियादी बातों में से एक है? तो फिर वह जो सुझाव दे रहा है वह यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि इन चीजों को लागू करने की आवश्यकता है, बल्कि यह कि वे उन मूल्यों का सुझाव देते हैं जो भगवान के पास हैं और वह किसी चीज पर कितनी दृढ़ता से आपत्ति करता है। अब क्या इससे आपको मदद मिलती है? क्या आपको वहां कोई स्विच दिखाई देता है? यह वही है जिसे आपको लागू करने की आवश्यकता है। बनाम ये मूल्यों की एक श्रृंखला है जिन्हें विकसित किया जा रहा है। उनका सुझाव है कि आम तौर पर कानून के लिए बड़ा सवाल अक्सर मूल्यों के एक निश्चित समूह को विकसित करने का होता है। मेरे लिए उसका मतलब बनता है। अब प्रश्न, क्या यह मेरे लिए समस्या का पूर्णतः समाधान कर देता है? नहीं, लेकिन इससे मुझे मदद मिलती है और मुझे लगभग 80% या 70% मदद मिली है। इसलिए अभी भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन इससे मुझे मदद मिलती है। हन्ना का यह कहना कि इसका कोई भी मतलब कैसे हो अगर इसे लागू न किया जाए तो यह अर्थहीन हो जाता है, बिल्कुल यही रॉबर्ट कह रहा है। आप कानून को लागू करने के बारे में सोच रहे हैं, वह कह रहा है। नहीं, कानून का मतलब ही सामाजिक मूल्यों का बयान है। यह कहता है कि ये वे मूल्य हैं जिनकी आपको अपनी संस्कृति के मूल में वास्तव में आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक संस्कृति के अपने कानून होते हैं, जिनका हमेशा यह अर्थ नहीं होता है कि कानून उसी तरह लागू किए जाएंगे जैसे वे कानून की किताबों में हैं, बल्कि वे बताते हैं कि एक संस्कृति क्या महत्व देती है और एक संस्कृति क्या अस्वीकार करती है। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि कानून के बारे में हम कैसे सोचते हैं, इसकी पूरी अवधारणा में बदलाव की जरूरत है और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए मददगार है। अंततः वह यह कहता है कि कानून मूल्य संकेत हैं, कि वे केवल नैतिक कानूनी कोड के रूप में नहीं बल्कि मूल्यों का संकेत देते हैं। मुझे डर है कि मैं इसे स्पष्ट रूप से नैतिक कानूनी संहिता के रूप में सोच रहा था और रॉबर्ट ने जो किया वह मुझे सामाजिक मूल्यों की ओर वापस धकेल रहा है। अब सवाल है, मुझे लगता है कि हन्ना के पास भी कुछ है। क्या कोई चीज आपको परेशान करती है? आप में से कुछ लोग अभी भी इसे कानूनी कोड के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि यह उसी तरह से लिखा गया है। मैं अभी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन यह दूसरा तरीका मुझे इसे कुछ हद तक नरम करने में मदद करता है। तो यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप सोचें, जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हों। आपके साथ ईमानदार होने के लिए, मैंने वास्तव में इसके बारे में इस तरह से कभी नहीं सोचा था जब तक कि पिछले साल हमने इस पर इतनी बड़ी चर्चा नहीं की थी और यह समझ में आया था। जी लेक स्टैलियोनिस, आंख के बदले आंख, 27-38-33-18। अब अन्य कठिन कानून अंगविच्छेद कानून हैं। यह एक आसान तरीका है जिससे आप परिचित हैं। इसे लेक स्टैलियोनिस कहा जाता है। यह आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या मामला है? तो वह आपके दांत पर मुक्का मारता है, तुम उसके दांत पर मुक्का मारो। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, तब हम सब दंतविहीन हो जाएंगे, है ना? यह कैसा न्याय है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। खैर, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि क्या यह न्याय है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। दूसरे शब्दों में, यह कानून यह कहना चाह रहा है कि सजा अपराध के बराबर होगी। अब कुछ संस्कृतियों यानी हम्मुराबी की संहिता और कुछ अन्य संस्कृतियों में क्या हो सकता है? क्या यह संभव है कि आप किसी का दांत तोड़ दें? यदि वह व्यक्ति राजा है तो वह अपना दांत तोड़ने के लिए आपका सिर काट देगा। तो इसका मतलब यह है कि आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, दांत के बदले दांत, आपने जो नुकसान किया है वही आपको दंड मिलेगा। यह बराबर होना चाहिए। आप अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि मैं राजा हूं और उसने मेरा दांत तोड़ दिया, उसका सिर काट दो। कुछ अन्य संस्कृतियों में यह अति प्रतिक्रिया आम है। यदि आप कुछ गलत करते हैं तो पूरी तरह से अत्यधिक प्रतिक्रिया होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने यह किसके साथ किया है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत कहता है कि अपराध और सजा एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। इसलिए यह वास्तव में यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि कोई व्यक्ति अति प्रतिक्रिया न करे। क्या आप में से कोई कभी ऐसी स्थिति में रहा है जहां प्रतिशोध चल रहा हो? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ कुछ करता है और व्यक्ति अधिक कठोर और कठोर प्रतिक्रिया देता है। तब यह व्यक्ति अधिक कठोर और अधिक कठोरता से प्रतिक्रिया करता है और यह और भी बढ़ जाता है। कानून क्या कह रहा है? नहीं, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसा कि किया गया है, सजा भी अपराध के अनुरूप होनी चाहिए। इसके साथ दूसरी बात, और यह अमेरिका में होता है, मैं कल रात ही इसे देख रहा था, यह काफी दिलचस्प था। वहां एक आदमी है जो 7-11 स्टोर को लूटने के लिए आता है। मान लीजिए कि उसके पास एक बंदूक है और एक 72 वर्षीय दादी है। यह सुबह 1 बजे है, वह 7-11 स्टोर में एक लड़के से बात कर रही है। एक आदमी दुकान में चोरी करने आता है। तुम्हें पता है दादी क्या करती हैं? यह खरी सच्चाई है। यह दादी इस स्कैनर चीज को पकड़ लेती है और जब यह लड़का सामान चुराने की कोशिश करता है तो वह इस लड़के पर प्रहार करना शुरू कर देती है। यह आदमी यह सामान चुराने की कोशिश कर रहा है और दादी ऐसे ही जा रही है। यह सब कैमरे में कैद हो गया है, इसलिए यह सबसे मजेदार बात है। वह इस लड़के को पीट रही है। वह आदमी सामान चुरा लेता है, वह दुकान से बाहर भाग जाता है। अब मान लीजिए कि वह अमेरिका में पकड़ा गया। उसने $100 चुराए और दादी के सिर पर चोट लग गई। वह जीत गई। यह काफी प्रभावशाली था। मैं उस औरत से उलझना नहीं चाहूंगा। तो हमारी संस्कृति में ऐसा होता है, उसने ₹100 चुराए, उसके पास एक बंदूक है उसकी बांह के नीचे। उसका क्या होगा? क्या उसे सशस्त्र डकैती के आरोप में जेल भेजा जाएगा? मुझे उम्मीद है कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या अमेरिका में हम सजा के लिए लोगों को कैद में रखते हैं? कितने लोग जेल में हैं? क्या यह 2 या 3 मिलियन है? मेरे दिमाग में 2 मिलियन का आंकड़ा अटका हुआ है। अब मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि वह आंकड़ा मेरे दिमाग में बस गया है। 2 मिलियन लोगों को जेल में डाल दिया गया। क्या इतने सारे लोग जेल में हैं? वैसे क्या वास्तव में लोगों को कैद में रखने के लिए अमेरिका को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है? किसी को 1 साल तक जेल में रखने की कीमत क्या है? मेरा मानना है कि यह $30,000 से अधिक है। वैसे यदि आप कैलिफोर्निया से हैं, तो उम्मीद है कि कोई भी कैलिफोर्निया से नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया से हैं, तो उनकी जेलों में बहुत सारे लोग कैद हैं और उनका बजट कर्ज में डूबा हुआ है। इसलिए कैलिफोर्निया अरबों डॉलर पानी में डूबा हुआ है और वे जो कह रहे हैं वह यह है कि हम इन लोगों को जेल में रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए वे इन लोगों को सड़क पर खुला छोड़ने जा रहे थे क्योंकि अब वे उन्हें हमारी जेलों में रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। अब प्राचीन काल में समस्या क्या थी? क्या प्राचीन काल में उनके पास जेलें थीं? राजाओं को जेलों तक पहुंच तो थी, लेकिन बहुत कम। यूसुफ जेल में था, लेकिन केवल राजा के पास ही ऐसी जेल होगी। तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो क्या आपको उस व्यक्ति को जेल में डालने का विशेषाधिकार मिल सकता है? यदि कोई हथियारबंद डाकू बेथलहम में 7-11 को लूटने के लिए आता है, तो उनके पास उस व्यक्ति को डालने के लिए जेल नहीं है। तो होता यह है कि उन्हें तुरंत न्याय मिलना होता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपके पास जेलें नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत न्याय करना होगा। यहां तक कि हमारी कुछ जेलों में भी क्या वे कभी तुरंत कुछ करने की कोशिश करते हैं? क्या तुम लोगों ने कभी यह सुना है? यदि कोई व्यक्ति किसी से कुछ चुराता है तो उसे वास्तव में वापस जाना होगा और उस व्यक्ति का सामना करना होगा जिससे उसने चुराया है, और जितना उसने चुराया है उसका दोगुना चुकाना होगा, तीन गुना, चार गुना जो उसने उस व्यक्ति से चुराया है। क्या यह वास्तव में अच्छी बात है कि उसे वास्तव में उस नुकसान का सामना करना पड़ेगा जो उसने किसी अन्य व्यक्ति को किया है? हाँ, अब हमारे पास बर्नी मैडॉफ जैसे प्रमुख अपराधी हैं। उसे उन लोगों का सामना करना पड़ा जिनका उसने अपमान किया और वह उन पर हंसा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां थोड़ा पछतावा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने नियम में कुछ ऐसा है, जहां आपने कुछ चुराया था तो आपको उसका 20% भुगतान करना पड़ता था। उनके पास जेलें नहीं थीं, आप उन्हें जेलों में नहीं डाल सकते, तो इसलिए यदि वे कुछ करते हैं और यह आपके हाथ को नष्ट कर देता है तो आप उस व्यक्ति के हाथ को नष्ट कर देते हैं। तो यह तत्काल न्याय है जो दिया जाता है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जेलों की कमी के कारण उन्हें अलग ढंग से न्याय करना पड़ता था। एच बहुविवाह 33:19-35:00। यहां एक और है, बहुविवाह कानून। बाइबल में बहुविवाह पर कानून है। व्यवस्था विवरण अध्याय 21:15। यदि किसी पुरुष की दो पत्नियां हैं और वह एक से प्रेम करता है परंतु दूसरी से नहीं। एक मिनट रुकिए, क्या आप मुझे यहां बता रहे हैं कि बाइबल बहुविवाह को मंजूरी देती है? अध्याय 21:15 में कहा गया है कि लड़के की दो पत्नियां हैं और वह एक से प्यार करता है लेकिन दूसरे से नफरत करता है। इसके बारे में बाइबल में कोई कानून है? क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर बहुविवाह को मंजूरी देता है? नहीं, भगवान ने आदमी और औरत, आदम और हव्वा को बनाया। हालांकि क्या उस समय लोग बहुपत्नी संबंध रखते थे? राहेल और लिया के साथ जैकब, बिल्हा, दासी आदि। यह कानून किसकी रक्षा करता है? यह किस पत्नी की रक्षा करता है? किस पत्नी को सुरक्षा की जरूरत है? अप्रिय पत्नी, तो यह कानून क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं तो उसकी अप्रिय पत्नी की रक्षा की जाएगी। अप्रिय पत्नी, क्या यह कानून अप्रिय पत्नी की रक्षा करता है? क्या यह अच्छी बात है? खैर, सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बहुविवाह नहीं है, लेकिन यह कहता है कि अगर वहां है और उस संस्कृति में ऐसा था तो आपको नापसंद पत्नी की रक्षा करनी होगी। ये है बहुविवाह कानून। गुलामी कानून 35:01-37:45। ये भी वैसा ही है। गुलामी के कानून अध्याय 15:12। तो यदि कोई यहूदी साथी अपने आप को तुम्हारे हाथ बेच दे और 6 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करे तो 7वें वर्ष में क्या होगा? वह मुक्त हो जाता है। तो हाँ, बाइबल में गुलामी के कानून हैं। क्या इसका मतलब यह है कि बाइबल गुलामी को मंजूरी देती है? वैसे क्या यह अफ्रीकी प्रकार की गुलामी है? वहां जाओ, लोगों को पकड़ो, उन्हें नावों पर बिठाओ, उन्हें यहां खींचो और फिर वे जीवन भर उस व्यक्ति के गुलाम रहेंगे। इसका मतलब यह है कि एक आदमी खुद को किसी को बेच देता है और 7वें साल में वह आजाद हो जाता है। कोई व्यक्ति खुद को किसी और को क्यों बेचेगा? ऋण। हमारी संस्कृति में हम इसे ऋणग्रस्त दास्ता कहेंगे। क्या कुछ लोग इसे दिवालियापन कहेंगे? दूसरे शब्दों में, यह आदमी दिवालिया हो रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। क्या उस समय उनके यहाँ अकाल पड़ा था? जब उनके पास अकाल पड़ा तो आप किराने की दुकान तक नहीं जा सकते थे, खाने के लिए कुछ नहीं था और आपका परिवार भूखा मर जाता था। तो आप अपने आप को एक अमीर आदमी को बेचते हैं, उसकी फसल काटने में उसकी मदद करते हैं और फिर आपको क्या मिलता है? आपको अपने परिवार के लिए भोजन मिलता है, ताकि आप अपने परिवार को खाना खिला सकें। 6 साल के बाद आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। बाइबल में गुलामी के कानून हैं, लेकिन यह गुलाम की रक्षा करता है। क्या ये सख्त कानून हैं? लेकिन क्या उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से भिन्न है? हाँ, लेकिन वे चीजें अलग तरीके से करते हैं और निस्संदेह वे गलत हैं। क्या आप वहां विडंबना देखते हैं? हम निर्णय की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। मेरे लिए विडंबना यह है कि अगर आप 21वीं सदी में हमारे छोटे पीसी संसार में फिट नहीं बैठते हैं, तो हमारी संस्कृति कितनी निर्णयात्मक हो गई है। दरअसल पिछले वर्षों में मैंने छात्रों को सख्त होते और सख्त होते देखा है। पिछले साल तक जब मैंने एक छात्र से पूछा कि ओल्ड टेस्टामेंट से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिली, और उसने कहा, भगवान बच्चों को मारता है। अब मैं यह कह रहा हूँ कि मुझे आशा है कि आप लोग इसमें सफल होंगे और आपकी सोच इससे थोड़ा आगे तक जाएगी। तो मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि आपको वास्तविक जीवन और एक ऐसे ईश्वर के साथ संघर्ष करना होगा जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है, और आपको चीजों को देखने के अपने अमेरिकी तरीकों से बाहर निकलना होगा। जे पशु 37, 46, 41, 51। अब पशु उपचार एक और विषय है जो वास्तव में दिलचस्प है। व्यवस्था विवरण में वास्तव में जानवरों के संबंध में कानून है। जानवरों को लेकर क्या है कानून? बेशक अब ये कानून बिल्लियों पर लागू नहीं होते। मेरे पास ये सभी बिल्ली चुटकुले हैं, लेकिन वे कुछ लोगों के साथ अच्छे नहीं लगते। अध्याय 22 श्लोक 10 एक उदाहरण है। वास्तव में बहुत सारे पशु कानून हैं। इसमें कहा गया है, बैल और गधे को एक साथ जोतकर हल न जोतें। अब यह क्यों कहता है कि बैल और गधे को एक साथ लेकर हल न जोतो? क्या बैल एक विशाल जानवर है? क्या बैल बहुत अच्छी तरह से हल खींच सकता है, क्योंकि यह वास्तव में एक मजबूत जानवर है? गधा क्या है? एक छोटा सा दुबला पतला जानवर। गधे सवारी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बैल की तुलना में जुताई के लिए जरूरी नहीं कि वे अच्छे हों। आपने एक गधे और एक बैल को एक साथ रखा, क्या यह गधे के लिए एक वास्तविक समस्या है? और वैसे यह बैल के लिए भी एक समस्या है, क्योंकि गधा सवारी करते समय बैल सारा काम करेगा। इसलिए यह कहता है, बैल और गधे को मत जोतना, क्योंकि यह किसी भी जानवर के लिए उचित नहीं है। क्या यह नए नियम में भी आता है? नए नियम में यह कहा गया है, अविश्वासियों के साथ असमान रूप से जुए में न जुड़े। तो आप बैल और गधे के इस नियम का रूपांतरण देख सकते हैं। 2 कुरिन्थियों में पॉल कह रहा है, विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। असमान रूप से जुए में मत फंसो, फिर वह इस कानून को उस स्थिति पर लागू करता है। इसलिए गधे और बैल को आपस में न जोड़े, क्योंकि यह किसी भी जानवर के लिए उचित नहीं है। अध्याय 25 श्लोक 4 पर जाए, जो जानवरों की स्थिति पर एक और दिलचस्प कानून है। व्यवस्था विवरण 25:4, जब बैल अनाज रौंद रहा हो तो उसका मुंह न दबाओ। क्या होता है कि वे अनाज के डंठल लेते हैं, वे गेहूं को काटते हैं और उसे बिछा देते हैं, और बैल उस पर चलता है। अब जब वह उस पर घूमता है तो क्या करता है? उसके पैर अनाज को कुचल देते हैं। इसकी गुठली के चारों ओर ये झाड़ियां होती हैं, गुठलियां कठोर होती हैं और झाड़ियां कठोर नहीं होती हैं। बैल उस पर चलता है और अनाज को तोड़ता है, और फिर लोग अनाज को हवा में उछालते हैं और भूसी उड़ जाती है, परंतु बैल ही उस पर पैर रख रहा है। क्या तुम लोगों ने कभी काले अखरोट खाए हैं? यदि आपको काले अखरोट मिलते हैं तो आप उन्हें अपने रास्ते में रख देते हैं और उन पर अपनी कार चलाते हैं, और यह स्वचालित रूप से काले अखरोट को हटा देता है। मैं इसमें अनुभवी हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मुझसे यह काम हाथ से करवाते थे और मेरे हाथ काले हो जाते थे और हर साल मैं स्कूल जाता था। इसलिए मैं अपनी जेब में हाथ डालकर गया और फिर हमने उनके ऊपर कार चलाने की यह तरकीब सीखी। यह सचमुच बहुत बढ़िया था। यह एक बैल की तरह था, लेकिन क्या आपको बैल को खाना खिलाना पड़ेगा? हाँ, आपको टैंक में गैस डालनी होगी। बैल को खाना खिलाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बैल आपके लिए काम कर रहा है, और जब बैल आपके लिए काम कर रहा है तो उन्हें अनाज का कुछ हिस्सा अपने लिए मिलना चाहिए। बैल के लिए यही उचित है कि यदि बैल सारा काम कर रहा है तो उसे कुछ भोजन मिले। दूसरे शब्दों में, आपके पास जानवर हैं, क्या आपको अपने जानवरों की देखभाल करने की जरूरत है? क्या कानून के अनुसार आपको अपने जानवरों की देखभाल करना आवश्यक है? हाँ, यदि वे आपके लिए अपना काम करते हैं तो उन्हें अपने लिए कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। यह उचित ही है। इसलिए पवित्र शास्त्र में जानवरों को भी अधिकार है। व्यवस्था विवरण 25। 3 साल पहले मैंने एक महिला को व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पशु कानूनों पर व्याख्यान देते हुए सुना था और यह बिल्कुल शानदार था। जानवरों के संबंध में ये सभी कानून बहुत दिलचस्प थे। क्या बाइबल यह भयानक है? मानव जाति के बारे में बहुत ऊंचा दृष्टिकोण रखती है। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन क्या बाइबल में जानवरों और जानवरों के साथ व्यवहार के बारे में भी बहुत ऊंचा दृष्टिकोण है? हाँ, ऐसा होता है। तो यह दिलचस्प है, और यहाँ कुछ पशु कानून हैं। के इज़राइल और चर्च 41:52-15। यहाँ चर्च और इज़राइल से संबंधित कुछ अंतिम प्रश्न हैं। चर्च इज़राइल नहीं है। इज़राइल एक राष्ट्र है। क्या देश को हत्या पर कानून की जरूरत है? क्या देश को चोरी के बारे में कानून की जरूरत है? क्या देश को बलात्कार पर कानून की जरूरत है? क्या चर्च एक राष्ट्र है? चर्च एक राष्ट्र नहीं है, इसलिए यह न्याय नहीं करता है, और इसमें नागरिक अर्थ में अदालतें नहीं हैं। इसलिए आपको इज़राइल और चर्च के बीच अंतर करना होगा। इज़राइल में कुछ ऐसे कानून बनने जा रहे हैं जो राष्ट्रवादी कानून हैं, जो चर्च के लिए नहीं हैं। क्या अंतर हैं? इज़राइल एक राष्ट्र है, चर्च एक सभा या लोगों का समूह है, इसलिए यह अलग है। आपको उन्हें अलग करना होगा। जिन बुनियादी चीजों पर मैं गौर करता हूं उनमें से एक अंतर्निहित सिद्धांत है। इनमें से बहुत से कानूनों में 3000 साल पहले की उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से बहुत अलग थी। तो आप इन कानूनों को व्यवस्था विवरण से कैसे निकालेंगे और आज उन्हें कैसे लागू करेंगे? वैसे क्या पॉल ने उन्हें नए नियम में लागू किया? क्या किसी को याद है कि जब बैल अनाज रौंद रहा हो तो उसका मुंह न दबाओ? क्या यह नए नियम में उन लोगों पर लागू होता है जो आपके लिए काम कर रहे हैं? क्या आपको उन्हें खाना खिलाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए? क्या आपको उस व्यक्ति को उचित वेतन देना चाहिए जो आपकी सेवा कर रहा है? जिस प्रकार तुम बैल का मुंह नहीं दबाते, उसी प्रकार जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है उसे उसका एक भाग मिलना चाहिए। इसलिए नए नियम में इसे चर्च के बुजुर्गों पर लागू किया गया है कि यदि वे चर्च के लिए काम करते हैं तो उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए। तो आप अंतर्निहित सिद्धांतों की तलाश करें। तलाक के अंतर्निहित सिद्धांत क्या हैं? यीशु ने इस मुद्दे पर क्या कहा? संस्कृति का कानून से क्या संबंध है? यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण तलाक की अनुमति दी है। क्या ईश्वर को तलाक मंजूर है? नहीं, मलाकी में भगवान कहते हैं कि उन्हें तलाक से नफरत है। फिर भी उसने उनके हृदय की कठोरता के कारण इसकी अनुमति दी। यदि उन्होंने तलाक की अनुमति नहीं दी तो वे क्या करेंगे? वे एक दूसरे को मार डालेंगे। क्या आज तक भी ऐसा होता है? मैं बस यही सोच रहा था, क्या आपको टेनेसी का यह मामला याद है? यह महिला कह रही थी कि यह लड़का उसके जले हुए भोजन के बारे में शिकायत कर रहा था, इसलिए उसने एक 12 गेज की बंदूक ली। वह लड़का बिस्तर पर था। बम बम इस आदमी को पीछे से गोली मार देता है जबकि वह बिस्तर पर था, क्योंकि उसने खाना जला दिया था और उसने इसके बारे में कुछ कहा था यह। इसलिए विवाह में संघर्ष है, और यदि आप तलाक की अनुमति नहीं देते हैं तो लोग एक दूसरे को मार डालेंगे जैसा कि वे आज तक करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान को तलाक मंजूर है। आपको अंतर्निहित सिद्धांत को देखना होगा। क्या विवाह दो लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव का स्थान होना चाहिए? हाँ, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपको यथार्थवादी रुख अपनाना होगा, अन्यथा वे एक दूसरे को मार डालेंगे। यदि शोर इतना अधिक हो जाए तो उन्हें तलाक लेने की अनुमति दें। अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? मरने से बेहतर है तलाक ले लिया जाए। इसलिए कानून इसलिए नहीं बनाया गया है कि उसे तलाक पसंद है, बल्कि यह जीवन को महत्व देने के अंतर्निहित सिद्धांत के कारण बनाया गया है। यह मेरे लिए नया है। कानून एक मूल्य संकेत है। कानून दिखाता है कि ईश्वर को क्या मंजूर है और वह क्या महत्व देता है। यदि बहुविवाह की स्थिति में आपकी दो पत्नियां हैं तो भगवान प्रिय या अप्रिय पत्नी में से किसका पक्ष लेते हैं? क्या ईश्वर वंचितों की रक्षा करता है? क्या यह अंतर्निहित सिद्धांत होगा? क्या ईश्वर दलित अप्रिय पत्नी की रक्षा करता है? भगवान ये कानून बनाते हैं जो गरीबों और पीड़ितों की रक्षा करने में मदद करते हैं। व्यवस्था विवरण उससे भरा हुआ है। तो कानून एक मूल्य संकेत है, इससे अधिक की ये कानूनी आवश्यकताएं हैं। उन्हें यह करना होगा, उन्हें झूठे भविष्यवक्ताओं और मूर्ति पूजकों को मारना होगा। यह मूल्यों का एक बयान है कि मूर्ति पूजक और झूठे भविष्यवक्ता वास्तव में बुरे हैं और भगवान उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इसराइल अमेरिका नहीं है। अमेरिका में जेलें हैं और इसलिए हम लोगों को जेल में डालकर अपने कुछ न्याय संबंधी मुद्दों को हल कर सकते हैं। वैसे आप में से कितने लोग जेल जाने के बजाय तुरंत न्याय पाना पसंद करेंगे? क्या 2 या 3 साल, 4 या 5 साल, 10 साल तक जेल में बैठने की बजाय दवा लेना और इससे छुटकारा पाना लगभग बेहतर होगा? इसलिए आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है कि न्याय कैसे वितरित किया जाता है, और मुझे यकीन नहीं है कि जेल हमेशा उतनी ही निष्पक्ष या मानवीय होती है जितनी हम बताते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमारी हड्डियों को झकझोर देती हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास इन सभी का समाधान है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप इनमें से कुछ चीजों को देखें और कहें कि वाह, यहां सोचने के लिए बहुत कुछ है। एल पुराना नियम और परिवर्तन 47:16-48:54। कभी कभी बाइबल ही टकरा जाती है। क्या पुराने नियम में यहूदियों को हैम खाना चाहिए था? क्या उन्हें झींगा मछली खानी थी? क्या उन्हें कैटफिश खानी थी? पुराने नियम में उन्हें कोशेर खाना चाहिए। नए नियम में क्या हमें बताया गया है कि हमें कोशेर नहीं खाना है? हम यहूदी नहीं हैं, हमें अब कोशेर खाने की जरूरत नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय 15 में आपको यह झड़प मिलती है जहां पीटर को उठने और ऐसी चीजें खाने के लिए कहा जाता है जो कोशेर नहीं है। भगवान कहते हैं, नहीं पीटर, ये लोग गैर यहूदी हैं जो अब चर्च में आ रहे हैं, और अन्य जातियों को कोशेर खाने की जरूरत नहीं है, और यह ठीक है। तो यह ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच टकराव है। नया नियम कहता है अब बदलाव का समय है, उन्हें कोशेर खाने की जरूरत नहीं है और उन्हें खतना कराने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर के सभी अन्य जातियों ने कहा, आमीन। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? समय के साथ इनमें से कुछ चीजों में बदलाव भी होते हैं, इसलिए आपको विकास संबंधी प्रश्न पूछने होंगे। यह कुछ बहुत कठिन चीजें रही हैं और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमने सब कुछ हल कर लिया है, लेकिन एक चीज जो हमने हल की है वह है व्यवस्था विवरण का अंत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक एक अद्भुत पुस्तक है। यह वाचा के नवीनीकरण की पुस्तक है जहां मूसा यहोशू को नेतृत्व दे रहा है और वह वाचा को नवीनीकृत करता है। वह इसका सारांश प्रस्तुत करता है, भविष्य में इसराइल के लिए संस्थान स्थापित करता है। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे हृदय, आत्मा और मन से प्रेम करो, तो यह बहुत बड़ी बात है। एन जोशुआ का परिचय 48:55-51-09। मैं आगे जो करना चाहता हूँ वह जोशुआ के पास जाना है। हमारे पास मानचित्रों का एक समूह होगा और हम इसे स्थापित करने जा रहे हैं। यहोशू में वादा की गई भूमि पर कब्जा करना शामिल है। तुम लोग जॉर्डन नदी हो, मैं मृत सागर हूँ, और यह इसराइल का देश है, और तुम लोग भूमध्य सागर हो। तो इस कक्षा में यहाँ का भूगोल मैं इसे स्थापित करना चाहता हूँ। यहोशू लोगों को वादा किए गए देश में ले जाने वाला है। हम तीन जीतों, दो समस्याओं और फिर युद्ध के मुद्दे पर गौर करेंगे। सबसे पहले नेताओं की प्रकृति और परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। जोशुआ की पुस्तक में नेतृत्व में परिवर्तन है। परिवर्तन मूसा से जोशुआ तक है। जब भी नेतृत्व में परिवर्तन होता है तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्या कुछ लोग पुराने नेता के प्रति वफादार रहेंगे? क्या नया नेता बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा पुराने नेता ने किया था? नहीं, वैसे क्या आप जोशुआ बनना चाहेंगे? क्या मूसा ही वह आदमी था? उन्होंने बाइबल की 5 किताबें लिखीं, माउंट सिनाई तक गए और 10 आज्ञाओं के साथ नीचे आए। मूसा ईश्वर से आमने सामने बात करता है। अब यहोशू आता है और उसे मूसा की जगह लेनी है। क्या आप उन जूतों में कदम रखना चाहेंगे? वे बड़े जूते हैं। जोशुआ के पास भरने के लिए बहुत कुछ है। तो अब जोशुआ की किताब में नेतृत्व का यह परिवर्तन है। हम शुरुआत में इसमें बहुत कुछ देखने जा रहे हैं, लेकिन आप जो पाते हैं वह यह है कि ईश्वर सदैव मौजूद नायक है। वास्तव में यह मूसा नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की उपस्थिति थी जिसने लाल सागर को विभाजित किया था। यह परमेश्वर ही था जो सिनाई में कानून दे रहा था। तो आपके पास जो है वह यह है कि भगवान आने वाले हैं और कहेंगे, अब यहोशू, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर सर्वदा विद्यमान नायक था। तो अब कहने को तो ईश्वर ही नेता बनने जा रहा है, और जैसे उसने मूसा के माध्यम से नेतृत्व किया वैसे ही वह यहोशू के माध्यम से भी नेतृत्व कर सकता है। इसलिए नेतृत्व परिवर्तन पर ध्यान भगवान पर केंद्रित होना चाहिए। एन नेता को प्रोत्साहन की आवश्यकता 51:10-53-08। क्या नेता सचमुच कभी नीचे गिरते हैं? क्या मूसा नामक मनुष्य कभी नीचे उतरा? यहां तक कि उन्होंने कहा, भगवान मेरी जान ले लो, अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। मूसा सचमुच परेशान हो गया और नीचे उतर गया। आप एलिजा के साथ भी ऐसा होते हुए देखेंगे। पुराने नियम के बहुत से नेता वास्तव में नीचे गिरने वाले हैं। यिर्मयाह विलाप गीत की पुस्तक लिखता है, यह सब कुछ कहता है। इनमें से बहुत से लोग वास्तव में निराश हो जाते हैं। भगवान जोशुआ के पास आते हैं और देखो वह क्या कहते हैं। यह यहाँ अजीब है। मुझे लगता है कि यह हमारा अगला बिंदु है। देखो वह क्या कहता है, यहोशू, तेरे जीवन भर कोई तेरे विरुद्ध खड़ा न हो सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। क्या यह एक सुंदर कथन है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा, परमेश्वर ने यहोशू से कहा। इम्मानुएल, मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन फिर वह कहते हैं, मजबूत और बहुत साहसी बनो। परमेश्वर यहोशू से कई बार यह कहने जा रहा है कि मजबूत और साहसी बनो। इससे मुझे लगता है कि यहोशू इस नेतृत्व की भूमिका को संभालने को लेकर थोड़ा बेचैन था। भगवान उससे कहते हैं, मजबूत और बहुत साहसी बनो, क्योंकि तुम इन लोगों को उस देश का उत्तराधिकारी बनाओगे जिसे देने के लिए मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी। फिर वह फिर कहता है, दृढ़ और बहुत साहसी बनो, और जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें दी है उसका पालन करने में चौकसी करो। फिर यदि आप श्लोक 9 तक जाते हैं तो वह फिर कहता है, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी है? मजबूत और बहुत साहसी बनो। तो भगवान यहोशू से कहते हैं, मैं नहीं जानता कि यहाँ कितनी बार मजबूत और साहसी बनो। जाहिरा तौर पर यहोशू को कुछ प्रोत्साहन की जरूरत थी और भगवान उसे वह देने जा रहे हैं जिससे वह मजबूत और साहसी बने, क्योंकि वह अपने लोगों का नेतृत्व करने जा रहा है। मूसा और जोशुआ की तुलना 53:09-56:27। अब क्या लोग पुराने नेता की तुलना नए नेता से करते हैं? क्या आप लोग कभी ऐसे चर्च में गए हैं जहां आपको एक नया पादरी मिलता है और हर कोई उसकी तुलना पुराने पादरी से करता है? यह आदमी बेहतर है, यह आदमी खराब है, इस आदमी ने इसे इस तरह से किया, हमने इसे हमेशा इसी तरह से किया है और यह एक नया तरीका है। दिलचस्प बात यह है कि ईश्वर स्वयं कहते हैं, यहोशू, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। बाइबल स्वयं इस तुलना को स्थापित करती है। यहोशू और मूसा दोनों ने अपने मंत्रालय की शुरुआत में पानी को विभाजित किया। मूसा ने लाल सागर को विभाजित किया और यहोशू ने जॉर्डन नदी को विभाजित किया। वह उसे विभाजित नहीं करता, परंतु पानी नीचे चला जाता है और वह यर्दन नदी के पार चला जाता है। जैसे उन्होंने पानी पार किया लाल सागर या रीड सागर, वैसे ही यहोशू पानी पार करने जा रहा था। और अध्याय 4:14 में यह जॉर्डन नदी के साथ आता है। वे सूखी भूमि पर यर्दन नदी पार करते हैं। परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को मूसा के लिए कठोर कर दिया। यहोशू में परमेश्वर ने कनानियों के हृदय को कठोर कर दिया, इसलिए कनानियों ने विरोध किया। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के दोनों शत्रुओं के मन को कठोर कर दिया और परमेश्वर ने यहोशू के शत्रुओं के हृदय को कठोर कर दिया। यह एक दिलचस्प बात है। मुझे लगता है कि यह निर्गमन 17 में हुआ था। मूसा युद्ध के लिए बाहर जाता है और मूसा अपना भाला उठाता है, और जब वह अपना भाला उठाता है तो क्या होता है? वे जीतते हैं। और क्या आपको याद है कि उनका हाथ थक जाता है और उनका भाला नीचे चला जाता है और फिर वे हार जाते हैं? हारून और हूर ने उसके हाथ ऊपर उठाए। तो आपके पास ये दो लोग हैं जो मूसा की बाहें ऊपर उठाए हुए हैं और बहुत जल्द वे थक जाते हैं, तो वे क्या करते हैं? अंत में वे भाले को ऊपर रखने के लिए मूसा के हाथों के नीचे चट्टाने रख देते हैं। यहोशू भी युद्ध में जाता है और अनुमान लगाता है कि वह क्या करता है, भाला पकड़ता है और वे दिन जीत जाते हैं। यह वही कार्य है जो मूसा ने किया था, भाला पकड़ो और जीत हासिल करो। आपको उसी तरह की चीज मिलती है। मूसा ने जीत का दावा करने के लिए भाला पकड़कर ऐसा किया था और जोशुआ ने भी ऐसा ही किया था। यहाँ एक और है, उनकी जीत को साथ साथ रखा जाता है। मुझे लगता है कि यह जोशुआ अध्याय 12 में है। इसमें मूसा की विजयों को सूचीबद्ध किया गया है और इसके बाद यहोशू की विजयों को सूचीबद्ध किया गया है। दोनों की तुलना करने के लिए उन्हें एक साथ रखा गया है और यह दिलचस्प है कि वे वहां समानांतर हैं। फिर अंतः, और यह वह है जो वास्तव में साफ सुथरा भी है, मूसा प्रभु के दूत को देखता है। मूसा की मुलाकात सबसे पहले प्रभु के दूत से कहां हुई? जलती हुई झाड़ी में। मूसा जलती हुई झाड़ी को देखता है और वह पास आता है और कहता है, वाह, इस जलती हुई झाड़ी को देखो। वह जलती हुई झाड़ी के पास आता है और प्रभु का दूत उससे क्या करने को कहता है? अपने जूते उतारो, तुम पवित्र भूमि पर हो। तो मूसा कहता है, एक जलती हुई झाड़ी, एक बोलती हुई झाड़ी, तुम्हारा नाम क्या है? और यह कहता है, मैं वही हूं जो मैं हूं। यहोशू प्रभु के दूत से मिलता है। वह ऊपर आता है और प्रभु का दूत उससे कहता है, अनुमान लगाओ क्या? अपने जूते उतारो, तुम पवित्र भूमि पर हो। इसलिए वे दोनों प्रभु के इस दूत के पास आते हैं और वे दोनों अपनी अपनी जूतियां उतार देते हैं, क्योंकि वे पवित्र भूमि पर हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि मूसा और जोशुआ के बीच यह समानता दिखती है जो जोशुआ के शुरुआती अध्यायों में की गई है। पी सभी इसराइल एक साथ, एकता 56:28-53:43। अब यहाँ कुछ पृष्ठभूमि बातें। यह इसराइल के इतिहास में एक अनोखा समय है। सारा इसराइल एक साथ है। यह शुरुआती अमेरिका की तरह है जहां सभी लोग अमेरिकी हैं और हर कोई एक साथ था। यदि आप जॉर्ज व्हाइटफील्ड को तट के ऊपर और नीचे जाते हुए देखें और व्हाइटफील्ड द्वारा किए गए महान कार्यों में से एक जॉर्जिया में अपने अनाथालय के समर्थन से 13 कॉलोनियों को एक साथ जोड़ना था। मैसाचुसेट्स के लोगों ने जॉर्जिया के लोगों के लिए योगदान दिया और कनेक्टिकट के लोगों ने जॉर्जिया के लिए योगदान दिया। वह फिलाडेल्फिया गए और बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रतिबद्ध हैं। तो आपके पास जॉर्ज व्हाइटफील्ड है जो पूर्वी तट पर ऊपर और नीचे जा रहा है और राज्यों को एक साथ जोड़ रहा है। इस बिंदु पर वे अपनी पहचान के साथ संघर्ष करते रहे। आरंभ से ही आपके पास इसराइल के साथ भी इसी प्रकार की बात है। यह एक ऐसा समय होगा जब वे एक साथ होंगे। गृह युद्ध में अमेरिका की तरह ही इसराइल ने भी उत्तर और दक्षिण को विभाजित कर दिया। क्या किसी को याद है कि ट्रांसजॉर्डन में 2.5 जनजातियां स्थापित की गई थीं और अन्य 9.5 जनजातियां वादा किए गए देश में चली गईं? रूबेन, गाद और मनश्शा के गोत्र के आधे लोग यर्दन में बस गए। तो जब यहोशू जॉर्डन नदी के पार जाता है तो क्या ये जनजातियां जाना चाहती हैं या वे कहते हैं, हमारे पास पहले से ही हमारी जमीन है, हम वहां जाकर आप लोगों के लिए नहीं लड़ेंगे, हमारी जमीन पहले से ही है। तो क्या होता है, यहोशू उनसे कहता है, जब वे नदी से गुजरते हैं तो वे कितने पत्थर उठाते हैं? 12 पत्थर। वे 12 पत्थर 12 जनजातियों के प्रतीक हैं। क्या रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को, जबकि उनका क्षेत्र उनके पास है, यर्दन नदी को पार करना होगा और इस देश पर कब्जा करने के लिए लड़ना होगा? हाँ, वे करते हैं। फिर बाद में उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी जाती है। यह वह समय है जब पूरा इसराइल एक साथ है और वे युद्ध में उतरते हैं। इसलिए रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को अन्य 9.5 गोत्रों की सहायता के लिए जॉर्डन नदी पार करनी होगी। प्रजेरिको का महत्व 58:44-60:05। जेरिको को पकड़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? हम यहाँ कुछ मानचित्र लेकर आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर ध्यान दें। क्या जेरिको एक बड़ी बात है? हमारे पास एक गाना भी है, जोशुआ फिट द बैटल ऑफ जेरिको, जो स्कूलों में गाया जाता था। लेकिन अब आप इसे स्कूल में नहीं गा सकते, लेकिन शायद चर्च में गा सकते हैं। क्या यह इस प्रकार की विडंबना है? क्या अब आप इसे पब्लिक स्कूलों में गा सकते हैं? कुछ स्कूल अभी भी ऐसा करते हैं, लेकिन जब आप ये अर्धधार्मिक चीजें करना शुरू करते हैं तो आप हर तरह की परेशानी में पड़ जाते हैं। लोग अब इस संस्कृति से घबरा रहे हैं। सहनशीलता। जेरिको का स्थान कहाँ है? जेरिको का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप खेल खेलते हैं तो क्या सीजन का पहला गेम कोई बड़ी बात है? पहला गेम एक तरह से अवधि निर्धारित करता है। तो यह जेरिको में वादा किए गए देश में उनकी पहली लड़ाई है। यह इस सीजन का आपका पहला गेम है। इसका स्थान क्या है? आर मानचित्र भूगोल का सर्वेक्षण 60-06-65-30। यह स्थान है। मैं इस मानचित्र के संदर्भ में यहाँ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। क्या आप यहाँ पहाड़ों की इस दीवार को नीचे आते हुए देखते हैं और यहाँ पर पहाड़ों की एक और दीवार है? क्या आप लोग जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? आपको ये दो महाद्वीपीय प्लेटें मिली हैं और ये दोनों प्लेटें यहीं मिलती हैं। क्या हुआ कि प्लेटें अलग हो गईं? वे अलग हो गईं और नीचे गिर गईं। यहाँ जो हुआ वह मूल रूप से इस चीज को छोड़ गया था जो समुद्र तल से 1270 फीट नीचे है, जो समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है। सारा पानी नमक सागर या मृत सागर में चला जाता है, वह बाहर कैसे निकलता है? यह वाष्पित हो जाता है और अवशेष पीछे छोड़ देता है, इसलिए इसमें 33% नमक है। तो क्या हुआ कि दो प्लेटें अलग हो गईं? आपके पास एक यहाँ और एक यहाँ है। यह एक घाटी में है या जिसे रिफ्ट वैली कहा जाता है, इसलिए आपको यहाँ 10-20 मील की दूरी तय करनी होगी। यह बीच में एक घाटी है जहाँ ये दोनों प्लेटें अलग हो गई हैं। यह गलील सागर के बीच से होते हुए एलाट की खाड़ी से होते हुए लाल सागर और नीचे अफ्रीका तक जाती है। ये दोनों प्लेटें डिस्कनेक्ट हो रही हैं और आपको यह यहीं देखने को मिलता है। मूसा यहीं माउंट नेबो पर रहने वाला है। इसराइली यहीं मोआब के मैदान में डेरा डाले हुए हैं। मूसा यहाँ माउंट नीबो पर मरने जा रहा है। फिर यहोशू उन्हें चट्टानों से नीचे उतारेगा और जॉर्डन नदी पार कराएगा। वे सूखी जमीन पर जॉर्डन नदी पार करने जा रहे हैं और जेरिको यहीं होगा। जेरिको घाटी में है या पहाड़ों में? यह घाटी में है। यह समुद्र तल से लगभग 800 फीट नीचे है। क्या घाटियों में गर्मी होने वाली है? क्या कोई डेथ वैली को जानता है? क्या घाटी में गर्मी होने वाली है? बेहद गर्म। गर्मियों में हर समय 120 नीचे। जेरिको में एक विशाल झरना है जो मुझे लगता है कि एक घंटे या एक दिन में 10,000 गैलन पानी निकालता है। यह बस इस सारे पानी को पंप करके बाहर निकाल देता है। प्रश्न, जब नीचे रेगिस्तान में बहुत गर्मी है तो क्या आपको पानी की आवश्यकता है? तो क्या यह सचमुच एक महत्वपूर्ण स्थान होगा? जब आप रेगिस्तान के पार जा रहे हैं तो आप यहाँ जेरिको में अपना पानी पकड़ेंगे और फिर आप यरूशलेम तक जाएंगे। क्या आपने देखा कि जेरिको और यरूशलेम एक ही स्तर पर हैं? वैसे क्या आपने मृत सागर की चोटी पर ध्यान दिया है कि यह मृत सागर की चोटी से जेरिको तक लगभग 3 या 4 मील ऊपर है? अब मैं बस उसकी कुछ चीजें बनाना चाहता हूँ। इसे जॉर्डन में किंग्स हाईवे कहा जाता है। यह मूल रूप से मेसोपोटामिया से लेकर अरब तक मसाला मार्गों तक जाता था। जब वे मसालों का व्यापार करते थे तो किंग्स हाईवे पर यात्रा करते थे। यह आप लोगों के लिए मार्ग एक जैसा है। क्या मार्ग एक उत्तरी अमेरिका के ऊपर और नीचे जाता है? आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। रूट एक, यह एक प्रमुख राजमार्ग है। इसे जॉर्डन नदी के पूर्व में ट्रांस जॉर्डन में किंग्स हाईवे कहा जाता है। तब आपके पास तट पर एक और होगा। तट पर यह आरटी जैसा है।
95।
क्या आप आरटी करते हैं? 95 तट के ऊपर और नीचे। न्यूयॉर्क शहर के लिए नीचे। हमेशा न्यूयॉर्क शहर में घूमें। आपको आरटी मिल गया है। 95 ऊपर जा रहा है। इस प्रकार इसे तटीय राजमार्ग या वाया मैरिस समुद्र का मार्ग कहा जाता है। यदि आपके पास मिस्र में सामान है और आप उन्हें परिवहन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप तटीय राजमार्ग पर जाएं। तो यह आरटी की तरह है। 95 इस तरह आरटी।
1.
आपको फॉर्म आरटी कैसे मिलता है? 1 से आरटी। 95 या आरटी से 95 से अधिक आरटी। 1 जेरिको। क्या आप यहां पार कर सकते हैं? आप यहां पार नहीं कर सकते क्योंकि आप मृत सागर से टकराते हैं। क्या आप यहां पार करना चाहते हैं? नहीं, आप यहां पार नहीं करना चाहते, यह सब रेगिस्तान है। आप यहां ऊपर आना चाहते हैं और दूसरे को पकड़कर ऊपर जाना चाहते हैं। क्या जेरिको व्यापार मार्ग पर जाने वाला है? वैसे ये पश्चिम है, ये पूरब है। जेरिको एक प्रमुख पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग पर है। उत्तर दक्षिण नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग जो दो एनएस राजमार्गों को जोड़ता है। यह लगभग एच की तरह है। यहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति जेरिको से होकर गुजरेगा। अब इसे देखने का एक और तरीका यहां है। अपना सिर दूसरी ओर घुमाएं, यह मृत सागर है। यह वास्तव में एक उपग्रह छवि है। मुझे यहां कुछ बटन दबाने दीजिए। यहां ऊपर माउंट नीबो है, यहीं पर मूसा की मृत्यु हुई थी। मोआब के मैदान में इसराइलियों ने यहीं डेरा डाला हुआ है। माउंट नीबो पर मूसा की मृत्यु हो गई। यहोशू जॉर्डन नदी पार करने जा रहा है। क्या आप जॉर्डन नदी अंधेरे क्षेत्र को मृत सागर में उतरते हुए देख सकते हैं? वे जॉर्डन नदी पार करेंगे और जेरिको से टकराएंगे। जेरिको वहीं स्थित होगा। तो जेरिको वहां चट्टानों के ठीक बगल में है। यह मृत सागर से उत्तर की ओर केवल कुछ मील की दूरी पर है। क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या किसी ने कभी कुमरान मृत सागर स्क्रॉल के बारे में सुना है? वे यहीं इस क्षेत्र में और मृत सागर के उत्तर पश्चिमी कोने में पाए जाते हैं। इस वर्चुअल जेरिको पैनोरमा 6531700। अब क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि हम जेरिको जा सकें? हम ऐसा क्यों नहीं करते? तो अब मैं आपको जेरिको ले जाना चाहूंगा, लेकिन इसे बेहतर दिखाने के लिए मुझे अपने रिजोल्यूशन में कुछ स्क्रीन परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो कृपया थोड़ा धैर्य रखें। हम जेरिको जाना चाहते हैं और यहां हम जेरिको में हैं। क्या मैंने इस कक्षा में इस बारे में बात की है कि टेल क्या है? एक कहानी सभ्यता का एक टीला है। इसकी सभ्यता की परत पर परत एक परत केक की तरह है। क्या आप देख सकते हैं? यह यही जेरिको है। इसे टेल ऑफ जेरिको कहा जाता है। क्या यह सभ्यता की परत दर परत है? यह 8000 ईसा पूर्व तक जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। वैसे जब इसकी शुरुआत हुई तो यह जमीनी स्तर पर था। क्या आप देख सकते हैं कि यह अब जमीनी स्तर पर नहीं है? यह लगभग 75 फीट ऊंचा है। क्या आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण हो चुका है? लोग अपना कूड़ा सड़कों पर फेंकना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आप 100 वर्षों तक ऐसा करते रहेंगे। शहर ऊपर जाने लगता है। तो वही हुआ। तो यह जेरिको है। अब मैं जेरिको का पता लगाना चाहता हूं। जो चीजें आप इस पर करते हैं वही तकनीकें आप गेट लॉस्ट इन जेरूसलम पर उपयोग करते हैं जो अब ऑनलाइन है। याद रखें कि आप लोगों को यरूशलेम की सैर करनी है। तो फिर भी चलो अन्वेषण करें। तो क्या आप मानचित्र से देख सकते हैं कि आप इन बिंदुओं पर घूम सकते हैं और आप यहाँ किनारे की चीजों को देख सकते हैं? तो फिर भी आइए एक दृश्य देखने के लिए यहाँ चलें। अब आप देख सकते हैं कि यह साइड से जेरिको है और यदि आप शिफ्ट कुंजी का उपयोग करते हैं तो आप वास्तव में जूम इन कर सकते हैं, जो बहुत आसान है। फिर आप चारों ओर देख सकते हैं और आप उस तरह जा सकते हैं और पूरे जेरिको शहर को देख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि उनके पास उन गोंडोला कारों में से एक है और आप सीधे चट्टान पर चढ़ जाते हैं। यदि आप कुछ रुपए का भुगतान करते हैं तो आप टेम्पटेशन पर्वत तक जा सकते हैं, जहां ईसा मसीह को उस पर्वत पर प्रलोभित किया गया था। आइए चारों ओर देखें। आइए मैं आपको टेम्पटेशन का पर्वत दिखाता हूं। मुझे थोड़ा पीछे जाने दीजिए, वहां हमारी कार है। मुझे थोड़ा पीछे जाने दो और फिर यहां। क्या तुम्हें वहां ऊपर वह पहाड़ दिखाई देता है? क्या आप देख रहे हैं कि उस चट्टान के शीर्ष पर एक मठ है? यह एक किले जैसा दिखता है, लेकिन यह एक मठ है। वहां भिक्षुओं का एक समूह रहता है। इसे प्रलोभन का पर्वत कहा जाता है। यहीं पर वे कथित तौर पर यीशु को ऊपर ले गए थे। याद रखें, शैतान उन्हें दुनिया के सभी साम्राज्य दिखाने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया था। झुको और मेरी पूजा करो, यही वह जगह है। क्या आप मानते हैं कि?
नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा।
वहां ऊपर मौजूद भिक्षुओं को छोड़कर कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। तो यह कथित तौर पर प्रलोभन का पर्वत है। एक बार मैं इन चट्टानों पर चढ़ गया और इन चट्टानों के पीछे रेगिस्तान में लगभग 20 मील तक चला, लेकिन मैं आपको वह कहानी बाद में बताऊंगा जब हम गिबोन जाने वाले रेगिस्तान में ऐ शहर के बारे में बात करेंगे। आइए जेरिको वापस आएं। मैं वापस जेरिको की ओर घूमने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि वहां नीचे कैसा दिखता है। क्या यह काफी सुनसान है? आप वहां नीचे उनके घर देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए, इस पर नजर रखें। क्या किसी को चक्कर आता है? आइए शीर्ष पर जेरिको चलें। मैं आपको किनारे पर ले जा रहा हूं ताकि हम एक खाई को देख सकें। आप वास्तव में देख पाएंगे कि पुरातत्वविदों ने कहां खुदाई की है। यह वह जगह है जहां उन्होंने खुदाई की है। क्या आपको याद है कि मैंने कैसे बताया था आप जली हुई परत के बारे में? एक जली हुई परत है। क्या तुम लोग जली हुई परत देख सकते हो? आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह लगभग 6 इंच चौड़ा है। आप देख सकते हैं कि आग से मिट्टी काली हो गई है। इसे बर्न लेयर कहा जाता है। यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं तो यह जेरिको तक आने वाली एक प्राचीर है। क्या आप देख सकते हैं कि पुरातत्वविदों ने यहां क्या किया? पुरातत्वविद ने एक खाई खोदी और वे उसमें से गुजरे और खुदाई की, और उन्होंने इस खाई से खोदी गई सभी सामग्रियों को वर्गीकृत किया। वे अब इस खाई शैली में खुदाई नहीं करते हैं। यह एक पुरानी तकनीक है जिसे जर्मनों ने 1933 में इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर आप यहां वापस जाएं और ऊपर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां एक दीवार है। उस दीवार पर एक बड़ी बहस चल रही है कि क्या वह प्रारंभिक कांस्य थी या बाद की कांस्य या कोई कांस्य नहीं थी। जेरिको की दीवारों पर बड़ी बहस चल रही है। क्या तुमने सुना है कि उन्होंने जेरिको की दीवारें गिरी हुई पाईं? यदि आप केनियोन की स्थिति लेते हैं तो वे कहते हैं कि कोई दीवारें नहीं हैं। मैंने अभी अभी एक महिला को इस पर बहस करते हुए सुना और उसने कहा कि बाइबल गलत है। वह पुरातात्विक रूप से कहती है कि 1200 में जेरिको में कोई दीवारें नहीं थीं जब मूसा अंदर गया था। वहां कोई दीवारें नहीं थीं, इसलिए बाइबल गलत है। ये सिर्फ मिथक और किंवदंतियां हैं। पुरातत्व यह साबित करता है। अब आप कहेंगे कि इस साइट पर ब्रायंट वुड के अध्ययन के बारे में क्या कहना है जब वह कहता है कि बाइबल सही थी। अब वैसे क्या पुरातत्व हमेशा एक जैसा होता है या हर 10 या 20 साल में अपना मन बदल लेता है? तो यह वहां की कुछ दीवारों का एक उदाहरण है। एक और जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं। अब आप देखिए कि आप इसे कैसे संचालित कर सकते हैं जब मैं घूमता हूं और यह एक तीर में बदल जाता है। जब यह तीर में बदल जाता है तो मैं वहां क्लिक कर सकता हूं और जब मैं वहां क्लिक करता हूं तो मैं वहां चला जाता हूं। तो अब हम वहां ऊपर हैं। अब हम उन दीवारों को देख रहे हैं जिन्हें हम पहले देख रहे थे। आप साइट के चारों ओर अपना रास्ता बना सकते हैं। मैं धोखा देने जा रहा हूं। वैसे यदि आप नहीं जानते कि आप क्या देख रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यह सामने आता है और यह आपको जानकारी बताता है कि आप क्या देख रहे हैं। तो मैं यहां पहाड़ पर चढ़ने जा रहा हूं। मैं यहां से इस पार तक जा रहा हूं। क्या आप देख रहे हैं कि यह यहां का टावर है? इसे नवपाषाणकालीन मीनार कहा जाता है। यह नवीन पाषाण युग से लगभग 8000 ईसा पूर्व की है। क्या जेरिको दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है? वास्तव में पुराना और मुख्यतः पानी के झरने के कारण। यहां वास्तव में एक प्राचीन मीनार है। यहां पर क्या आप थोड़ा सा पत्थर देख सकते हैं कि वे मिट्टी की ईंटों से कैसे बने हैं? उन्होंने मिट्टी की ईंट से दीवारें बनाई। आप मिट्टी की ईंट यहीं देख सकते हैं। खैर चलो यहां से निकलो। क्या आप देखते हैं कि यह कैसे संचालित होता है? आप चारों ओर देख सकते हैं। यदि आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट कुंजी दबा सकते हैं और इसे जांचने के लिए जूम इन कर सकते हैं। यदि आप नियंत्रण कुंजी दबाते हैं तो आप वापस जूम आउट हो जाते हैं। मैं मानचित्र पर वापस जा रहा हूं और यहां नीचे जा रहा हूं और वास्तव में यदि आप एक पर्यटक हैं तो आप यही देखेंगे। वहां तार देखे? उनके पास तार हैं जो आपको गोंडोला पर टेम्पटेशन पर्वत तक ले जाएंगे। क्या यह इतना स्थूल है? तुम्हें चलना चाहिए और पैदल ही भूमि का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ऐसा करता हूं क्योंकि यह मेरा पसंदीदा है, क्योंकि मेरा दोस्त यहां है। क्या तुम देखते हो? क्या वह मुस्कुरा रहा है? वह मुस्कुरा रहा है। आप जानते हैं कि वह एक खुश ऊंट है। और क्या तुम देखते हो कि उसकी नाक पूरी है? आप कहते हैं, हिल्डेब्रांड, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने बहुत से ऊंटों को देखा होगा कि उनके नथुने कटे हुए हैं। वे ऐसा करते हैं और यह पशु क्रूरता है। क्या बहुत से ऊंटों की नाक फट गई है? वहां लोग वास्तव में ऊंटों के प्रति क्रूर हैं। लेकिन क्या ऊंट सचमुच सजावटी भी होते हैं? यह एक तरह से दोतरफा सड़क है। आप इसकी नाक देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऊंट की कितनी अच्छी देखभाल की गई है। लेकिन यह आदमी बहुत कुछ चाहता था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को इस तक नहीं जाने दूंगा। सिनाई में नीचे वाले व्यक्ति ने उसे ऊपर जाने दिया। उसने बस उसका पैर पकड़ लिया और मुझे बस इतना ही नुकसान उठाना पड़ा। फिर यहां यह टेम्पटेशन रेस्तरां है। यह टेम्पटेशन का पर्वत है जहां ईसा मसीह को प्रलोभित किया गया था। तो यह जेरिको है और किसी ने मुझे बहुत बुरी बात कही है। वेस्ले हाल ही में वहां गया था। यह पूरा होटल अब चला गया है, इसलिए उन्होंने पूरे होटल को नष्ट कर दिया। यह सचमुच दुखद है। तो यह जेरिको है। क्या यह आपको यह एहसास दिलाता है कि यह कैसे काम करता है? आपके पास जेरूसलम होगा और आप जेरूसलम में खोजबीन करने में सक्षम होंगे। तो चलिए मैं अपने नियमित संकल्प पर वापस आता हूं। टी राहब और जेरिको 75-01-83-58। जेरिको को लौटें। हम वेश्या राहब और उसके साथ होने वाली कुछ चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जोशुआ अध्याय 2, मुझे राहब के बारे में शुरुआती छंद पढ़ने दीजिए। वह जेरिको की वेश्या है। इसमें कहा गया है, तब नून के पुत्र यहोशू ने गुप्त रूप से शित्तीम से 2 जासूस भेजे और कहा, देश पर विशेषकर यरीहो पर जाओ। इसलिए वे जाकर राहाब नाम वेश्या के घर में घुसे। वे कनानी वेश्या के घर क्यों जाएंगे? क्या अंदर और बाहर तक पहुंच आसान होगी? क्या वह सब कुछ जानती होगी जो शहर में चल रहा है? यदि आप जासूस हैं तो क्या वह बात करने के लिए एक अच्छी इंसान होगी? तो वे अंदर चले गए। वह एक कनानी वेश्या है और वे वहीं रहते हैं। यरीहो के राजा को बताया गया, देखो कुछ इसराइली हमारे देश का भेद लेने आए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब से कहा, जो इसराइली तेरे घर में घुस आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। परंतु स्त्री ने उन दोनों पुरुषों को ले जाकर छिपा दिया। उसने कहा, हाँ वे लोग मेरे पास आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कहाँ से आए थे। प्रश्न, क्या यह सरासर झूठ है? जैसे ही उन लोगों ने 2 शब्द कहे, क्या उसे पता चल गया होगा कि वे कहाँ से आए हैं और वे यहूदी थे और कनानी नहीं थे? क्या ऐसे द्वंद्वात्मक मतभेद हैं जो किसी को भी ठीक ठीक पता होंगे? मैं कहता हूँ, मैं बोस्टन में अपना कैश लेने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं कहता हूँ, कहा, या मेरे पास एक अच्छा विचार था। प्रश्न, अगर मैं IDR कहूँ तो क्या आप जानते हैं कि मैं बोस्टन से हूँ? वे लारव में R भी डाल देते हैं। यह मुझे पागल कर देता है। मैं इसका उच्चारण भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं कहूँ, आप सभी आज रात मेरे घर आ रहे हैं, अब क्या मैं मेसन डिक्सन से बिल्कुल नीचे चला गया हूँ? मेरी पत्नी, वह हमेशा मुझ पर बहुत गुस्सा होती थी, क्योंकि वह कहती थी, मैं अपने बच्चों को इस तरह बात करना नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि हम टेनेसी में थे। लेकिन जिस तरह से वहाँ लोगों ने बात की, वह मुझे पसंद आया। वे वास्तव में निश्चिंत हैं। लेकिन यह टेप पर है और शायद मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मेरी पत्नी एक वास्तविक अंग्रेजी प्रमुख है। वह ठीक से अंग्रेजी बोलती है। राहाब 2 जासूसों को छुपाती है और फिर वह राजा से कहती है कि क्या वास्तव में यह अच्छा है। वह कहती है, वे यहाँ थे लेकिन वे वापस चले गए। यदि तुम लोग उनके पीछे भागो तो शीघ्र ही उन्हें पकड़ लोगे। इसलिए वह उन्हें जंगली हंस का पीछा करने के लिए भेजती है। वैसे क्या राहब ने राजा के आदमियों से झूठ बोला था? यह आपको किस बात की याद दिलाता है? जिन्होंने किसी के जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोला और भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। मिस्र में दाइयां, क्या आपके तहखाने में यहूदी हैं? नहीं, वे उस ओर गए। वैसे क्या ईश्वर राहब को स्वीकार करता है? पूरा शहर नष्ट हो गया और कौन बचा? राहब, क्या राहब को ईश्वर का अनुमोदन प्राप्त है? न केवल वह बच जाती है, बल्कि कनानी वेश्या राहब किसकी वंशावली में चली जाती है? यीशु, जब आप मैथ्यू अध्याय 1 में हैं और आप वंशावली के नीचे जा रहे हैं और आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देखते हैं और यह पूरी तरह से नीचे जाता है और आप राहब को मसीहा की पंक्ति में कनानी वेश्या पाते हैं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि क्या युद्ध में आप धोखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह जैसे बास्केटबॉल में जब आप नकली गेंद फेंकते हैं। इसे युद्ध के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। जनरल एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें धोखा देती है और क्या वह इससे बच निकलती है? वह इससे दूर हो जाती है। अब क्या होता है? अध्याय 2 में नीचे एक अद्भुत कथन है। सुनो, राहाब ने क्या कहा? भेदियों के रात भर सोने से पहले वह छत पर चढ़ गई और उनसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है। ध्यान दें कि वह यहोवा नाम का उपयोग करती है और आपका वह महान भय हम पर आ गया है। यहाँ तक कि इस देश में रहने वाले सभी लोग तुम्हारे कारण भय से पिघल रहे हैं। हमने सुना है कि यहोवा ने लाल समुद्र का पानी कैसे सुखा दिया। क्या वह लाल सागर पार करने के बारे में जानती थी? उसे यह कैसे पता चला होगा? जब व्यापारी मिस्र से बाहर आए तो वे उस कहानी को जेरिको तक ले आए। वे पार जाते हैं, क्या वह इन दुकानों को जानती है? वह जासूसों को बताती है। जासूस उसे लाल सागर पार करने के बारे में नहीं बताते। वह जासूसों से कहती है, हम जानते हैं कि तुम्हारे यहोवा ने लाल सागर को कैसे सुखा दिया, और तूने यर्दन के पूर्व के एमोरियों के दो राजाओं सीहोन और ओग से क्या किया, जिनको तूने सत्यानाश कर डाला। जब हमने यह सुना तो हमारा हृदय पिघल गया और आपके कारण सभी का साहस विफल हो गया। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर है। क्या यह अधिकांश यहूदियों से प्राप्त वक्तव्य से बेहतर है? तो वह आगे बढ़ती है और कहती है, कृपया मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम मेरे परिवार पर दया दिखाओगे, क्योंकि मैंने तुम पर दया की है। मैं आप पर दया दिखाता हूँ, आप मुझ पर दया दिखाते हैं, लेक स्टैलियोनिस। क्या परमेश्वर वेश्या राहाब को छोड़ देता है? वह लोगों को खिड़की से बाहर जाने देती है। वे कहते हैं, तुम्हें अपनी खिड़की पर एक छोटी सी लाल रस्सी बांधनी होगी और तब हमें पता चल जाएगा कि यह तुम्हारा घर है। जब दीवारें गिरेंगी तो अनुमान लगाओ कि किसका घर बचा है और अनुमान लगाओ कि कौन बचेगा। राहब, वह इज़राइल में स्वीकार कर ली जाती है और मसीहा की वंशावली में समाप्त हो जाती है। यह एक अविश्वसनीय महिला है। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाना चाहता हूँ जो भूगोल न जानने पर छूट जाती है। युद्ध में महिलाओं की क्या भूमिका है? क्या महिलाएं बाहर जाकर कहती हैं, अरे मैं ताइक्वांडो और ब्राजीलियाई जू जानती हूँ, जित्सु, मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ, या क्या युद्ध में महिलाएं पुरुषों को धोखा देती हैं? वे उन्हें मात देते हैं। आपको बस कील, हथौड़े और खूंटे वाली महिलाओं से सावधान रहना होगा। इसलिए वह जो करती है वह वाकई दिलचस्प है। वह नीचे घाटी में जेरिको में है। जब आपके दुश्मन आपका पीछा कर रहे हो तो आप आमतौर पर किस दिशा में जाते हैं? जब मैं छोटा था, मैं गिरोहों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पड़ोस में दो समूह थे। एक समूह धूम्रपान करने वालों और शराब पीने वालों का था और दूसरे लोग खेल खेलने वाले बच्चे थे। तो मूलतः हमने सिर पीट लिया, इसलिए उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। और जब आपका पीछा किया जाता है तो आप किस दिशा में भागते हैं? आप हमेशा घर की ओर भागते हैं। और इसलिए यहाँ क्या होता है, जासूस शहर से बाहर निकल जाते हैं और वे स्वाभाविक रूप से माउंट नेबो और उन सभी यहूदियों के पास वापस भाग जाते हैं जहां उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी। यदि वे उस दिशा में पूर्व की ओर भागेंगे तो वे किससे टकराएंगे? राजा के आदमी यर्दन नदी से वापस आ रहे हैं। तो राहाब उनसे क्या कहता है? वह कहती है, यर्दन नदी की ओर मत भागो, नहीं तो पकड़े जाओगे। इसके बजाय ठीक उसी विपरीत तरीके से दौड़ें जिस तरह से वे दौड़ते पश्चिम की ओर पहाड़ों की ओर दौड़ें। तो वह उनसे कहती है कि इस पहाड़ पर चढ़ो, पहाड़ पर बैठो। जब वे पहाड़ पर बैठे हों तो क्या वे राजा के लोगों को शहर में वापस आते देख सकते हैं? फिर आप क्या करते हैं कि आप उनके चारों ओर दौड़ते हैं और आप सभी सुरक्षित रहते हैं। वैसे क्या यह सचमुच बुद्धिमानी पूर्ण और अच्छी सलाह है? वह वास्तव में चतुर है और वह उन्हें कुछ अच्छी सलाह देती है और इन लोगों की जान बचा लेती है और इस तरह वह दिन जीत जाती है। तो राहब काफी महिला थी और वह हीरो है। यू जॉर्डन नदी को पार करना 83:59:21। इसलिए वे जॉर्डन नदी तक जाएंगे और जॉर्डन नदी को पार करेंगे। आप जॉर्डन नदी के बारे में क्या जानते हैं? यह ठंडा और ठंडा है। शरीर को ठंडक पहुंचाता है, आत्मा को नहीं। मुझे जॉर्डन नदी के बारे में थोड़ी बात करने दीजिए। सबसे पहले मैं नियाग्रा नदी पर पलावढा हूं। क्या नियाग्रा नदी एक वास्तविक नदी है? क्या आप में से कोई नियाग्रा फॉल्स गया है? यह लगभग 1 मील चौड़ी है। यह एक वास्तविक नदी है। मैं इसराइल को जाता हूं और यर्दन नदी तक जाता हूं। जॉर्डन नदी औसतन 60 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी है। प्रश्न, मैं जहां से आया हूं, क्या वह नदी है? हम उन खाड़ियों को कहते हैं। मेरे ससुर इसराइल में हमसे मिलने आए और हम उन्हें पूरे इसराइल में ले गए और अंत में वह मुझसे परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैं जॉर्डन नदी देखने जाना चाहता हूं। मैं पूरे इसराइल में रहा हूं और मैंने जॉर्डन नदी नहीं देखी है। मैं कहता हूं, दादाजी, मैं आपको वहां नहीं ले जाना चाहता। यह बर्बादी है। यह बिल्कुल वुड्स क्रीक की तरह है। इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूं, ठीक है, एक रात चलो वहां नीचे चलें। इसलिए मैं रात में अपनी कार चलाता हूं और जॉर्डन नदी पर अपनी रोशनी चमकाता हूं। तब वह वास्तव में मुझ पर क्रोधित हो जाता है और कहता है, यह नदी नहीं है, यह एक सिंचाई खाई है। वास्तव में यह जॉर्डन नदी थी। अब आप कहते हैं कि 1 मिनट रुकें, जॉर्डन नदी 60 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी है। जॉर्डन नदी को पार करने में कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। वे यर्दन नदी कब पार कर रहे थे? जब वे गिलगाल पहुंचेंगे तो वे दूसरी ओर क्या जश्न मनाएंगे? वे फसह का पर्व मनाने जा रहे हैं। इसलिए वे जॉर्डन नदी पार करने जा रहे हैं और फसह का जश्न मनाएंगे। क्या हम ठीक ठीक जानते हैं कि वह कब है? क्या यह वसंत ऋतु में है, हमारे ईस्टर के समय के बारे में? वसंत ऋतु में जॉर्डन नदी के साथ क्या समस्या है? वह बरसात के मौसम से बाहर आ रही है। यह बाढ़ के चरण में है। बाढ़ की स्थिति में जॉर्डन नदी 1 मील चौड़ी हो सकती है। वैसे क्या जासूस दैवीय हस्तक्षेप के बिना नदी पार कर गए? क्या जासूसों ने यर्दन नदी को अपने आप पार किया? इसे बाढ़ की स्थिति में भी कोई व्यक्ति जो तैरना जानता हो पार कर सकता है। वैसे जॉर्डन नदी में भी लोग डूबे हैं। मेरा इरादा इसे ज्यादा तूल देने का नहीं है। तो जासूस इसका पता लगा लेते हैं। क्या परमेश्वर यर्दन नदी को सुखा देगा? हाँ, वह है। जॉर्डन नदी को पार करना क्या चमत्कार था या प्राकृतिक कारणों से? अध्याय 3:15-16 में मुझे जॉर्डन नदी और उसके सूखने के बारे में बात करने वाले इन छंदों को पढ़ने दें। बहुत ध्यान से सुनो। वैसे जब वे लाल सागर के पार गए तो क्या तुम्हें याद है कि उसने लाल सागर में क्या कहा था? बाईं और दाईं ओर पानी जमा था, दोनों तरफ दीवार की तरह। जब वे पार गए तो लाल सागर बाईं और दाईं ओर ढेर हो गया था। जॉर्डन नदी के साथ ऐसा नहीं था। अब फसल के पूरे समय यर्दन नदी बाढ़ की स्थिति में रहती है। यह वसंत की फसल है, गेहूं और जौ की कटाई के दौरान। तो भी ज्यों ही संदूक उठाने वाला याजक यर्दन के पास पहुंचा, तब उनके पाँव पानी की धार को छूने लगे और ऊपर की ओर से पानी बहना बंद हो गया। क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? क्या पानी दीवार की तरह जमा हो गया है या ऊपर की ओर से बहना बंद हो गया है? और वह बहुत दूर एडम नामक नगर में ढेर हो गया। जहां वे पार हुए थे वहां से लगभग 10 मील उत्तर में जॉर्डन नदी एक घाटी से होकर गुजरती है। वह घाटी की दीवार इतिहास में 2 बार ढह चुकी है, जिसके बारे में हम जानते हैं। घाटी की दीवार ढह गई है और एक बांध बन गया है और जॉर्डन नदी पर बांध बन गया है। 1927 में उनमें से एक पतन हुआ। यह वास्तव में रिकॉर्ड किया गया है, हमें इसका लिखित रिकॉर्ड मिला है। घाटी की दीवार ढह गई और जॉर्डन नदी सूख गई। यह कहता है कि पानी एडम पर रुका, यह वही जगह है जहां यह घाटी है। क्या यह संभव है कि भगवान ने अपने उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया? वैसे क्या यह अब भी चमत्कार है? जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में ऐसा दो बार हुआ, 2000 वर्षों में दो बार। पुजारी ऊपर जाते हैं और उसमें पैर रखते हैं और अचानक पानी नीचे चला जाता है। और कुछ नहीं तो क्या यह समय का चमत्कार है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह भगवान का चमत्कार था, लेकिन भगवान प्राकृतिक तरीकों का उपयोग कर सकते थे और ऐसा लगता है कि यहां पानी एडम पर ढेर हो गया। इसलिए यह संभव है कि उसने घाटी की दीवारों को ढहाने का इस्तेमाल किया हो। छात्र का प्रश्न क्या होगा कि घाटी ढह जाएगी, यह एक बांध बनाएगी और पानी वापस ऊपर आएगा, वापस ऊपर ऊपर जाएगा और यह उस बांध पर अधिक से अधिक दबाव डालेगा और अंततः इसे उड़ा देगा। क्या तुम लोगों ने कभी पानी और बांधों से रेत के महल बनाए हैं? जब आपको पर्याप्त पानी मिलता है और पानी टूट जाता है और यह हर चीज पर बह जाता है, तो यह ईश्वर का चमत्कार था, लेकिन हो सकता है कि ईश्वर ने जॉर्डन घाटी के ढहने का उपयोग किया हो। तो मूल रूप से हम इसी बारे में बात करना चाहते थे और हम अगली बार 12 पत्थरों को पकड़ेंगे। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट अपने पुराने नियम के इतिहास, साहित्य और धर्मशास्त्र की कक्षा में ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक के कठिन कानूनों और जेरिको के कब्जे तक जोशुआ की पुस्तक के परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। कार्ली बामर द्वारा प्रतिलेखित टेड हिल्डेब्रांट 2 द्वारा रफ संपादित